पवित्र कृष्ण जन्माष्टमीच्या निमित्त सगळ्या भक्तांचं स्वागत. 12 वाजता आपण कृष्ण जन्माष्टमी आपण महोत्सव जो साजरा करणार आज रात्री, आणि हा शुभ दिवस जो आहे अतिशय महत्वाचा भक्तांसाठी, कारण आज भगवान श्रीकृष्णाचं आविर्भाव दिवस या धरतीवर. श्रीमद भागवतम मध्ये एक श्लोक आहे, शिणवताम स्वकृता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन प्रिदंतस्य हि अपद्राणि विदुनोति सुरित्सिताम. भगवान श्रीकृष्ण या धरतीवर अवतीर्ण होत आहेत आणि अनेक लीला या धरतीवर रचवत आहेत, आणि त्याचा एकच उद्देश म्हणजे आपल्या सगळ्यांचं मन आकर्षित करण्यासाठी त्यांच्या प्रती. नाहीतर भगवंतांना या जगामध्ये येण्याची आवश्यकता नाहीये. पण काय येत आहेत या जगात? हाय बाहेरी कारण आहे की दुष्टांना वध करण्यासाठी, अधर्म जे आहे ते दूर करण्यासाठी, धर्मचं स्थापन करण्यासाठी. पण ते काय, ते त्यांच्या अनेक शक्तींच्या द्वारे पण ते स्थापित करू शकतात. पण अंतरंग कारण म्हणजे भगवंत येत आहेत आणि ते त्यांच्या अनेक अनेक लीलाच्या द्वारे आपलं मन आकर्षित करतायत. या भौतिक जगामध्ये आपलं मन वेगळ्या वेगळ्या कारणासाठी किंवा वेगवेगळ्या कार्यात आपले मन आकर्षित होत आहे, आणि ह्या भौतिक जगात अशा वेगळ्या वेगळ्या कार्यामध्ये आकर्षित होण्याने आपलं जे मन दूषित होत, आणि या दूषित मनापासून जे का आपलं कार्य आणखीन दूषित होत. भगवंत येत आहेत आणि आपलं मन आकर्षित करण्यासाठी जेव्हा आपण अशा ज्या लीला, कारण हे स्वाभाविक आहे की आपल्याला काहीतरी कोणाकडनं गोष्ट ऐकायची इच्छा असतेस, म्हणून हे जे सिनेमा नाटिका हे सगळं प्रसिद्ध का आहेत, कारण आपल्याला आपलं मन त्या प्रती आकर्षित होत आहेत. म्हणून सगळ्यांना माहित आहे की एखाद्या पिक्चरमध्ये हिरो किती मार खाल्ला तरी अखेर जिवंत तोच असणार, बाकीचे सगळे मरणार. समोर 15 जण आले गुंडे तरी तो हिरो तोच जिंकणार. सगळ्यांना माहित आहे, तरी आपण जातो. आपण म्हणजे भक्त जात नाहीत, भक्त जायची इच्छा पण नाही करायला पाहिजे, पण आकर्षित होतो आपण बघायला की काय होत. तसंच भगवंत आपल्या लीलेद्वारे सगळ्यांना आकर्षित करतायत, आणि अनेक अनेक लीला भगवंत या जगामध्ये येऊन रचवतायत, कारण आपलं मन आकर्षित व्हावं म्हणून. भगवान श्रीकृष्ण जे आहेत सर्व आकर्षित, त्यांच्या लीलेद्वारे, त्यांचं जेव्हा आपण लीलाचं स्मरण करतो, त्यांचा जेव्हा लीला ऐकतो आपण, तर भागवतामध्ये हे वर्णन केलेलं आहे की जेव्हा आपण अशा लीला जेव्हा आपण श्रवण करतो, त्यांच्या आपल्या हृदयामध्ये जे काय अभद्र आहेत ते सगळे धुतलं जातं. शिणवताम स्वकृता कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना, कारण भगवंत शुद्ध आहेत, त्यांचं लीला शुद्ध आहे, त्यांचे गुण शुद्ध आहेत, त्यांचं नाम शुद्ध आहे, त्यांचं रूप शुद्ध आहे. तर जेव्हा आपण अशा भगवंताचं जेव्हा आपण लीला ऐकतोय, पुण्य श्रवण कीर्तन काय परिणाम होतो? हृदयंतस्य ही अभद्राणी, हृदयामध्ये जे काय अभद्र आहेत ते सगळे धुतल्या जात. विदू नव्हती स्वरित सताव. आणि शिलप्रपात ते तात्पर्य सांगतायत की हा एक लक्ष असलं पाहिजे सगळ्या जीवात्माचं, की कसंही करून आपण भगवंतांच्या प्रती आपलं मन आकर्षित केलं पाहिजे. आणि असे अनेक प्रकार आहेत जे आपण भगवंताच्या प्रती आपण आकर्षित होऊ शकतो. आता आपण अभिषेक पाहिलं, सुंदर भगवंताची अभिषेक, ह्याच्याने पण आमचं मन आकर्षित होत. भगवंताचं रूप बघून, भगवंताचं गुण ते पण ऐकून आकर्षित होतो. भौतिक जगामध्ये पण आपण बघतो की एखाद्या व्यक्तीच्या प्रती आपल्याला आकर्षित व्हायचं असेल तर त्यांचं गुण किंवा त्यांचं कार्य आपण जेव्हा आपण त्यांचं श्रवण करतो तेव्हा आपण आकर्षित होतो. तसंच भगवंताचं जेव्हा आपण चर्चा करतो, भगवंतांचे गुणाबद्दल, भगवंताच्या भक्तांबद्दल जेव्हा आपण चर्चा करतो, जेव्हा आपण श्रवण करतो, तेव्हा हळूहळू जे आहे आपण भगवंताप्रती जे आहे आकर्षित होतो. आणि हे स्वाभाविक आहे. आणि हे सगळ्या साधू संतांचं हेच म्हणणं आहे की जोपर्यंत आपण श्रवण करत नाही तोपर्यंत आपण पुढे भगवंताप्रती प्रेम व्यक्त करू शकत नाही किंवा भगवंताप्रती जे सेवा जी आहे ते आपण करू शकत नाही. म्हणून शास्त्रामध्ये याचा उल्लेख केला गेला आहे की जितकं तितकं श्रवण. तर अशा पवित्र दिवसात आपण पूर्ण दिवस जो आहे भगवंतांच्या लीलाबद्दल, भगवंताच्या वेगवेगळ्या कार्यामध्ये आपण सेवेमध्ये आपण लागतोय. आणि आता जे आहेत 2-3 तास भगवंतांच्या विषयावर आपण चर्चा करू, आम्ही श्रवण पण करतोय. आणि आता एक अर्धा तासानंतर राधा गोपीनाथ प्रभू 1-2 तास तुम्हाला भगवंतांच्या दिव्य वाणी च्या द्वारे तुमचं मन आकर्षित करणार आहेत. फक्त अर्धा तास तुम्हाला फक्त माझा ऐकावं लागेल. असं सांगितलं गेलंय की भगवंत आणि त्यांचे भक्त त्यांच्यामध्ये काही फरक नाही. कारण भगवंतांच्या प्रती जे आकर्षण आपल्याला प्राप्त होते ते भगवंतांच्या भक्तांच्या द्वारेच होतं. जोपर्यंत आपल्याला भगवंताचे भक्त सांगत नाहीत तोपर्यंत आपण कसं आकर्षित होऊ. आणि भगवंताद्वारे आकर्षित होतो आपण एक शुद्ध भक्तांच्या द्वारे. कृष्ण कृपामूर्ती एसी भक्तिवेदना स्वामी प्रभुपादच्या द्वारे आपल्याला ही सुंदर भेट प्राप्त झालेली आहे, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम. आणि जेव्हा आपण श्रीमद भगवद्गीता आणि भागवतम जेव्हा आपण वाचतोय तेव्हा आपलं जे भगवंताच्या प्रती जे काय भगवंताची जी महिमा आहे किंवा भगवंताच्या प्रती जे काय प्रेम ते आपण स्थापित करू शकतो आपल्या हृदयामध्ये. रूप गोस्वामी जे काही प्रमुख आचार्य आहेत आपल्या संप्रदायामध्ये, आम्हाला आम्ही सगळे रूपानु म्हटलं जातं आम्हाला सगळ्यांना. कारण आपण त्यांचे जे शिक्षण जे आहेत ते आपण पालन करतोय. आणि त्यांनी लिहिलंय एक पुस्तक उपदेश अमृत की कसं एका भक्ताना भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी काय करायला पाहिजे. एक नवीन नवसुखी भक्त असतो त्यांनी कसं भक्तीमध्ये प्रगती केली पाहिजे ज्याच्याने अखेरी तो भगवंताच्या प्रती आकर्षित होऊ शकतो. तर ते पूर्ण जे आहे विस्तारित रूपे रूप गोस्वामीने उपदेश अमृत मध्ये त्यांचं वर्णन केलंय की एक नवसुखी भक्त असतो त्याला एक नियम पालन केलं पाहिजे आणि तो नियम पालन करतो. ज्याच्यात जे कार्य केलं पाहिजे जे नाही केलं पाहिजे त्याचा उल्लेख आहे. आणि त्या भक्ताला साधना भक्त म्हटलं जातं आणि जे काय कार्य करताना साधना भक्ती म्हटलं जातं. पण जर साधना भक्ती त्या नियम पालन करत असताना एका भक्ताचं मार्गदर्शनच्या खाली तर हळूहळू तो जो आहे भगवंताच्या प्रती आकर्षित होतो. आणि शिल प्रभुपाद श्रीमद भागवतांच्या एका तात्पर्याने सांगताय की जसं जसं भगवंताच्या म्हणजे एक भक्त जसं साधना भक्ती करत राहतो आणि तीव्रतेने साधना भक्ती करतोय तर हळूहळू जो आहे तो भगवंताच्या प्रती आकर्षण व्यक्त करतो. पण आकर्षण व्यक्त करण्याचा अर्थ काय म्हणजे ते लक्षण काय आहेत की हा व्यक्ती भगवंताच्या प्रती आकर्षित झालेला आहे त्याचं लक्षण काय आहे आणि जेव्हा तो परिपूर्ण त्या स्तरावर पोहोचतो एका शुद्ध भक्तच्या स्तरावर तेव्हा तोच लक्षण काय हे रूप गोस्वामी उपदेशामृतमध्ये त्याचा उल्लेख करतायत आणि शिल प्रभुपाद पण एका तात्पर्यमध्ये दुसरा स्कंदच्या तात्पर्यमध्ये शिल प्रभुपाद ह्याच्याबद्दल वर्णन करतायत. तर असे नऊ लक्षण सांगितले गेले आणि हे नऊ लक्षण मी जरा थोडं संक्षिप्त मध्ये त्याच्याबद्दल चर्चा करणार आहे आणि का चर्चा करतो कारण हे आपल्याला महत्वाची गोष्ट आहे की जोपर्यंत आपल्याला हे समजून येत नाही तोपर्यंत आपण तीव्रतेने भगवंताच्या विषयी ऐकण्याची ती तयारी होत नाही. म्हणजे जेव्हा आपण याच्यावर चर्चा करू आणि जेव्हा राधा गोपीना प्रभू भगवान श्रीकृष्णाबद्दल नंतर चर्चा करतील तेव्हा तुमची भावना पूर्ण प्रमाणात तयार होईल भगवंताबद्दल ऐकण्याची. असं सांगितलं गेलंय की पहिलं लक्षण आहे शांतीर. शांतीर म्हणजे तितिक्ष्वका म्हणजे सहनशीलता. सहनशीलता शिल प्रभुपाद सांगतायत की एका भक्ताला जे आहे अनेक अनेक गोष्टी ह्या भौतिक जगामध्ये विचलित करू शकतात आपलं मन आणि त्या भक्तांना त्या मना त्या विचलित गोष्टी ज्या असतात त्यापासून सहनशीलता व्यक्त केली पाहिजे. टॉलरन्स टॉलरेट केलं पाहिजे. अनेक अनेक गोष्टी होऊ शकतात. प्रभुपाद एक तात्पर्य सांगतात द ग्रेटनेस ऑफ अ मॅन इज डिटर्मिन्ड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिच्युएशन्स. अशा अनेक गोष्टी आपल्या जीवनामध्ये घडलेल्या असतील ज्याच्याने आपलं मन पूर्णप्रमाणे विचलित होऊ शकतो भ्रमित होऊ शकतो किंवा आपल्याला कधी कधी शंका पण येऊ शकते पण ते सगळं आपल्याला सहन केलं पाहिजे. आणि प्रभुपाद त्यांच्या जीवनापासून आपल्याला उदाहरण त्यांच्या जीवनाने उदाहरणाने आपल्याला दाखवलं कसं सहन करायचं. जेव्हा प्रभुपाद पाश्चात्य देशाला गेले तर ते एक ब्रजवासी होते वृंदावनात राहिलेले अनेक वर्ष. जेव्हा पाश्चात्य देशात गेले तर पूर्ण त्यांचा कल्चर संस्कृती एकदम वेगळंच. ज्यांच्या घरी जे राहायचे सॅली अग्रवाल शर प्रभुपाद एक टिफिन बॉक्स घेऊन घेतलेले त्यांच्याबरोबर म्हणजे तिथे कुकिंगसाठी पण टू टायर कुकिंग डब्बा आणि बटाटे घेऊन गेलेले त्यांच्याबरोबर कारण तर माहित होतं काय मिळणार की नाही खायला. म्हणजे अशा अशा गोष्टी शिल प्रभुपादांनी सहन केलं. फ्रीज मध्ये जेव्हा शिल प्रभुपादने उघडून बघितलं त्याच्यात मटन मच्छी सगळं ठेवलेलं त्याच्यातच प्रभुपादन हे सगळं सहन करावं लागलं. इतकंही नाही की बौरी जसं स्टेज त्या छोट्याशा अशा मुंबईमध्ये धारावी आहे झोपडपट्टी तिकडे तसंच न्यूयॉर्कमध्ये बौरी म्हणून ही जागा आहे जिथे श्रीमंत लोक राहत नाहीत जे सगळे एकदम फालतू लोक राहतात. अशा स्थितीमध्ये प्रभुपाद राहायला लागले आणि सगळे इकडे ड्रग ॲडिक्ट्स ड्रग घेणारे लोक येऊन तिकडे असेच रस्त्यावर झोपलेले रस्त्यावर पडलेले अशा स्थितीमध्ये प्रभुपाद राहायचे आणि प्रभुपाद तिकडे राहून प्रचार करायचे. एकदा जे ज्यांच्याबरोबर जो राहायचा तो डेव्हिड म्हणून एक माणूस होता त्या ड्रगच्या परिणामावर त्यांनी प्रभुपादांना बाहेर पण हकवला रात्रीच्या मध्यरात्री आणि प्रभुपादांना तिकडनं लगेच निघावा पण लागला तिकड. इतकंही नाही की जे कोणी प्रभुपादांच्या कडे ऐकायला यायचे प्रभुपाद स्वतः त्यांच्यासाठी सगळं काय करून त्यांना द्यायचे. आणि इतकंही नाही त्या लोकांना काय संस्कृती आहे ते काहीच कळेना. मुलगा मुलगी हा त्यांचं वेगळं रिलेशन अवैध संघ आणि यमुना माताजी ज्यांचं आपण श्रृंगार दर्शन ज्यावेळी गोविंद मादिपुरुषम जे आपण ऐकतोय, म्हणजे प्रथम सर्वप्रथम जे शिष्य आहेत प्रभुपादांचे, तर यमुना माताजी सांगतायत की पहिल्यांदा जेव्हा प्रभुपादांचा माझा संग झाला, प्रभुपादांनी मला मदत करायला सांगितलं, तर म्हणे की जेव्हा प्रभुपादांनी मदतीला बोलवलं मला आतमध्ये, तर प्रभुपादांनी पहिला प्रश्न विचारला, म्हणे तुम्ही तीन चुका केल्या, त्याचं सर्वप्रथम म्हणजे खूप मोठी चूक, म्हणजे किचनमध्ये असून भारतामध्ये हे सगळं नाही होत काही, पण तिकडे जेव्हा प्रभुपादांनी मनुष्य मदतीला आतमध्ये गेले तर प्रभुपादांनी विचारलं की प्रभुपादांनी सिगरेट ओढू शकते का इकडे बसून, म्हणजे मुलगी एकतर स्त्री आणि किचनमध्ये असून म्हणते प्रभुपाद कॅन आय स्मोक सिगरेट, प्रभुपादांनी त्यांना सांगितलं नाही असं करायचं नसतं, म्हणजे शांतप्रमाणे सांगितलं काय करायला पाहिजे, बघा चार नियम असतं, मांसाहार नाही, जुगार नाही, अवैध श्रीसंग नाही, हे नाही, नशापान नाही, ते सगळं नाही करायला पाहिजे, म्हटलं ठीक आहे, सिगरेट बाजूला ठेवलं, म्हटलं ठीक आहे, मग प्रभुपाद मी पाणी पिऊ, म्हटलं पण इथे जेव्हा आपण भगवंताचा जेव्हा आपण भोग तयार करतोय तेव्हा आपलं हात स्वच्छ असलं पाहिजे आणि पाणी सगळं प्यायला नाही पाहिजे किचनमध्ये, तर हे सगळं शिकव, नंतर काय खूप घाम येत होतं तर हाताने पुसायला लागली, कपडे पुसायला लागले, हे सगळं, तर विचारलं प्रभुपाद खूप घाम येत आहे इकडे, तर प्रभुपादांनी सांगितलं बघ तू आता हात लावलेस इकडे तिकडे तर हात धू, असं करून एक एक गोष्टी जे आहेत यमुना माताजी म्हणाली की आम्हाला प्रभुपादांनी असं शिकवलं एक एक गोष्ट, तर म्हणे आपल्याला काहीच माहिती नव्हतं की काय म्हणजे करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे, प्रभुपादांनी प्रत्येक गोष्टी शिकवलं आपल्याला आणि प्रभुपादांकडे एवढी सहनशीलता होती की काही आपण गोष्टी काय केले तरी प्रभुपाद ते सगळे स्वीकार करायचे, जेव्हा पहिल्यांदा यज्ञ झालं तर यज्ञासाठी केळी ठेवलेली, तर एकाला भूक लागली तर केळी खाल्ली काढून, प्रभुपाद यज्ञ प्रज्वलित केलं तर लगेच ज्वाला भडकायला लागली, त्यांना म्हटलं तर पूर्ण रूम जे आहे रूमला आग लागणार, तर लगेच पळायला लागले, अशा सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत हा प्रभुपादांनी सहन केलं, हे प्रभुपादांची महानता, प्रभुपादांनी सहन केलं म्हणून आता आपण हे आंतरराष्ट्रीय कृष्णमाऊ संघ चा प्रचार एवढ्या पूर्ण देशामध्ये इतर देशामध्ये पूर्ण जगामध्ये पसरला, एकदा पुष्ट कृष्ण प्रभू शिल प्रभुपादांबरोबर प्लेनमध्ये होते आणि तिकडे नो स्मोकिंग झोन लिहिलेला, पण तरी रग्बी प्लेयर्स ते सगळे बसलेले आणि दादागिरी करायला लागले तिकडे, आणि पुष्ट कृष्ण सांगितलं एरोस्टसला की त्यांना सांगा स्मोक करू नका, तरी ते आणखीन जास्त करायला लागले, तर प्रभुपाद म्हणाले सहन कर, कारण ह्या जगामध्ये हे सगळ्या गोष्टी होणारच आहेत, काय काय करणार तुम्ही, म्हणजे सहन कर, आता आपण नाही सहन केलं तर आमच्या त्यांच्यामध्ये काय फरक आहे, तर सहन करणं हे सगळ्यात मोठं गोष्ट, एकदा ऑस्ट्रेलियामध्ये श्रील प्रभुपादांनी मंदिर स्थापना करायची इच्छा केली आणि मंदिर स्थापन करताना एवढे सगळे गडबड भक्त करायचे आणि पूर्णप्रमाणे जीन्स मध्ये जे अनेक दिवसापासून घातलेले जीन्स टी शर्ट काय काय वेगवेगळ्या ड्रेस मध्ये, तर प्रभुपादांना तुम्ही सगळे म्लेच्छा लोक आहेत, तुम्हाला काही सांगून फायदा नाही, आणि जाता जाता त्यांनी काय केलं गौरनित्याची स्थापन केली, पण गौरनित्या खूप म्हणजे दयाळू आहेत. हा, आणि जाता आता प्रार्थना केली गौरनिताईला की भगवंत मी तुम्हाला ह्या म्लेच्छांच्या हातात तुम्हाला सोपतोय, तुम्ही त्यांना टॉलरेट करा, सहन करा, असं करू. तर हा एक पहिलं लक्षण. दुसरं लक्षण एक भक्ताचं काय होतं, ज्यांच्या प्रती भगवंताच्या प्रती आकर्षण निर्माण होतो, दुसरं लक्षण आहे अव्यर्थ कालत्व. म्हणजे तो एकही क्षण जो आहे इतर गोष्टीमध्ये घालत नाही, म्हणजे पूर्णप्रमाणे तो भगवंताच्या सेवेमध्ये गुंतलेला असतो. आणि जे का त्याच्याकडे वेळ असतो तो हे विचार करतो की मी कसं भगवंताच्या सेवेमध्ये हे लावू शकतो. हे एक भक्ताचं लक्षण आहे, एक सिरियस भक्त त्याचं लक्षण आहे की तो असंच जे वेळ आहे तो वाया घालवत नाही. जेव्हा त्याला वेळ मिळते तो हे विचार करतो की मी हाता जो वेळ आहे माझ्याकडे मी कसं मी याचा उपयोग करेन, कसं मी भक्तांच्या सेवेमध्ये उपयोग करू शकतो. हे भक्ताचं लक्षण आहे. श्रील प्रभुपाद त्यांच्याकडे एकही असं वेळ नव्हतं की जे त्यांनी असं व्यर्थ घालवलं. जेव्हापासून त्यांना त्यांच्या गुरु महाराजांचा आदेश मिळाला की पाश्चात्य देशमध्ये जाऊन प्रचार करा, तेव्हापासून ते त्याच्यावर चिंतन करत होते आणि तेव्हापासून ते जे आहे त्याच्यात लागलेले. कसं मी हे जे माझ्या गुरु महाराजांची इच्छा आहे ते मी कसं मी साध करू. प्रचार भागवतम शिष्य म्हणतायत त्यांच्या जे सेक्रेटरी आहेत, त्यांचे जे सर्वेंट जे आहेत, की कधी कधी रात्रंदरात प्रभुपाद बसायचे पुस्तक भाषांतर करण्यासाठी. आणि त्यांना जेटलॅग म्हणून असं काहीच नव्हतं गोष्ट. जेटलॅग म्हणजे कसं असतं की समजा एखादा व्यक्ती इकडनं अमेरिकेत गेला, आता रात्र झालंय अमेरिकेत, आता सकाळ झालेलं आहे, आता 9:30 वाजलेत अमेरिकेत, आता 10:30 वाजलेत किंवा 8:30 वाजलेत, 8:30 आणि 10:30 मध्ये अमेरिकेत सकाळचं. तो जो व्यक्ती इकडनं जातो अमेरिकेला तर सकाळी पोहोचला असेल, तिकडचं सकाळ पोहोचला असेल त्याला रात्र वाटते तिकडे, म्हणजे रात्रीचा आभास होतो त्याला आणि त्याला झोप पुष्कळ येते. लॅग जेट लॅग म्हणजे दिवस रात्र त्यांना समजत नाही आणि त्याच्या तो व्यक्ती काम करू शकत नाही. पण प्रभुपाद एक असे व्यक्ती होते ते पूर्ण कधी आज ऑस्ट्रेलियाला, कधी उद्या अमेरिकेत, कधी परवा सिंगापूर, कधी साऊथ आफ्रिका. आणि जसेही पोचले की भक्त असायचे तिकडे त्यांचं स्वागत करायला, मग ते दर्शन द्यायचे, अनेक चर्चा व्हायची भगवान आपल्या भक्तांबरोबर. आणि जसं रात्र झाली म्हणजे तिकडचे 9-10 वाजले की मग ते आपल्या भाषांतरचं बसायचे 2-3 तास. श्रुतकीर्ती प्रभू सांगत होते की एकदा ते वृंदावनला आले आणि वृंदावनात होते आणि बघितलं की प्रभुपादांच्या रूमची लाईट चालू आहे आणि त्या दिवशी खूप मीटिंग्स होते, म्हणजे पूर्णप्रमाणे दमलेस असं समजायचं. तर म्हटलं लाईट कशाला चालू आहे आणि हळू असं उघडून बघितलं तर प्रभुपाद भाषांतर करत होते तिकडे पूर्णप्रमाणे. मग ते झोपले पण नंतर थोडा वेळ ते उठले, बघितलं तर अजूनही प्रभुपाद करत होते. म्हणजे 2-3 पर्यंत भाषांतर केल्यानंतर त्यांचं जप नंतर मग परत मीटिंग्स, दुसऱ्याची मीटिंग परत, मग दुसऱ्या रात्री पण तसंच असं करून, म्हणजे प्रत्येक एक एक क्षण जो आहे प्रभुपाद भगवंताच्या सेवेमध्ये लावायचे. म्हणजे त्यांना असं काही नव्हतं की वेळ, म्हणजे प्रत्येक वेळ वेळ कमी पडायचं शिल प्रभुपादांना, पण जे काही वेळ होतं त्यांच्याकडे ते पूर्णप्रमाणे भगवंताच्या सेवेमध्ये लावायचे. आणि प्रभुपाद अनेक वेळा सांगितलं की मी जे पुस्तक लिहिले माझ्या शिष्यांसाठी लिहिले ते पुस्तक हे प्रभुपाद आहेत. तिसरं लक्षण म्हणजे विरक्ती. विरक्तीर म्हणजे अनासक्ती. अनासक्ती म्हणजे कुठलंही कार्य केलं एक स्वाभाविकप्रमाणे एक व्यक्तीचं असं लक्षण काय असतं की कुठले कार्य केले आपण त्याच्याप्रती आसक्ती होतो किंवा आपण 10 जण सांगून दाखवतो की मी केलंय. कोणाला नाही माहित असलं कसंही करून आपण व्यक्त करून दाखवतो. प्रभुपादांनी हे आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ मध्ये अनेक शे मंदिर स्थापन केले, अनेक फार्म कम्युनिटी स्थापित केले, पण कधी त्यांनी असं सांगितलं नाही की मी केले. कुठल्याही एका जागेवर ते 3 दिवस किंवा 4 दिवसांत जास्त राहिले नाहीत. सगळ्यात जास्त वेळ म्हणजे मुंबईत राहिले आणि दुसरा एक वेळी लॉस एंजलिसला राहिले 2 महिने, कारण त्यांना चैतन्य चरितामृत पूर्ण करायचं होतं. म्हणून चैतन्य चरित त्यांना 2 महिने पूर्ण करायचे होते, तरी म्हणे की प्रभुपाद अधून मधून जाऊन यायचे. कारण जेव्हा चैतन्य चरितामृत करायचे होते त्यांनी ते कंडिशन टाकलेली शिष्याने की आम्ही पूर्ण करू तुमचं 2 महिन्यामध्ये, पण तुम्ही राहणार का इकडे, म्हणजे तुम्ही 2 महिने करणार असेल मी राहतो. ते दिले ऍश्युरन्स, पण तरी अधून मधून जाऊन यायचे. पण कुठेही 1-2 दिवस, 4 दिवस, 5 दिवस, 7 दिवस तेवढंच. आणि इकडनं गेले की दुसरीकडे, दुसरं तिसरीकडे. पण कधी असं म्हणून दाखवलं नाही किंवा असं व्यक्त केलं नाही की हे माझ्याद्वारे झालेलं आहे. पूर्ण जे श्रेय आहे ते आहे ते भगवंताला द्यायचे. आणि ते कधी होऊ शकतो, जेव्हा व्यक्ती पूर्णप्रमाणे भगवंताच्या सेवेमध्ये आसक्ती असतो तोच तो व्यक्ती विरक्ती बनू शकतो, नाहीतर नाही. नाहीतर आपण ह्या भौतिक जगामध्ये किंवा आपण काही केलं असलं त्याच्या प्रती आपण आसक्ती होतोच. तर हा तिसरं लक्षण भगवंताचं भक्ताचं, विरक्ती. चौथं लक्षण म्हणजे मानशून्यता, अभिमान. मानशून्य की अभिमान नसताना जे काय आपण कार्य करतोय तेव्हा कधी कधी आपल्याला अभिमान होतो, कुठलं कार्य सफल झालं असेल तर. पण प्रभुपादामध्ये हे हा लक्षण होता की कधी त्यांनी कुठलंही कार्य सफल झालं असेल त्याचं त्यांनी सगळं घेतलं नाही किंवा अभिमान दाखवला नाही. एकदा एका लेक्चरमध्ये प्रभुपाद भक्तांचं लक्षण बद्दल सांगत होते की फर्स्ट क्लास भक्त म्हणजे कोण, उत्तम श्रेणीचा भक्त म्हणजे कोण, नीच श्रेणीचा भक्त म्हणजे कोण. तर एक व्यक्ती मध्ये उठला आणि त्यांनी विचारलं की म्हणजे काय तुम्ही उत्तम श्रेणीचे भक्त आहेत ना, असं करून चॅलेंज केलं प्रभुपादानं. प्रभुपाद म्हणाले नाही, आय एम अ फिफ्थ क्लास डिवोटी. म्हणजे मी उत्तम श्रेणीचा नाही, मी नीच श्रेणीचा आहे. आणि एका काळी जेव्हा एका दुसऱ्या जागेवर एकाने चॅलेंज केलं तुम्ही कोण आहेत, तुम्ही काय शुद्ध भक्त आहेत का, त्यामुळे नाही मी सगळ्यांचा सेवक आहे, आय एम द सर्वंट ऑफ ऑल ऑफ यू. तर प्रभुपाद असे होते. एकदा एअरपोर्टवर सगळे बसलेले आणि प्रभुपादच्या ज्या सर्वंटनी सगळ्यांना घोषणा केली, कारण तिकडे एअरपोर्टवर खूप गर्दी झालेली, प्रभुपादांबरोबर खूप असे भक्त बसलेले आणि खूप गर्दी झाली. आता तिकडच्या ऑथॉरिटी सांगितलं की सगळ्यांना बाहेर काढा, बाहेर जा तुम्ही. तर त्याने अनाऊन्स केलं की सगळ्या लोक सगळे ड्युटीज जा इकडनं सगळे का. तर पहिले प्रभुपाद उठायला लागले, नाही प्रभुपाद तुम्ही नाही, तुम्ही बसत सगळे. पण काय मी नाही आहे का, मी पण आहे ना ड्युटी. प्रभुपाद पण त्यांच्यावर उठले. म्हणजे हे प्रभुपादांचं लक्षण. म्हणजे प्रभुपाद कधी कधी म्हणजे अशा प्रकारे वागणूक अनेक भक्त त्यांच्या जे साक्षात्कार सांगतायत तेव्हा म्हणतात की प्रभुपाद एवढे म्हणजे त्यांना बघून असं वाटायचं की त्यांच्यामध्ये काहीच मान नाही, अभिमान नाही. कधी पाहिजे तेव्हा आपण प्रभुपादांना भेटू शकतो, कधी पाहिजे काय चर्चा करू शकतो. आणि प्रभुपाद एवढे प्रेमळ दयाळू होते की कधी आपल्याला कधी वाटलं नाही की आपण एका अनोळखी व्यक्तीशी आपण बोलतोय. पाचवा आशबंद. आशबंद म्हणजे आशा. रूप गोस्वामी सांगताय की एक भक्तची आशा असते की कधी मी भगवंताचं मला शुद्ध भक्ती प्राप्त होईल, हे एक भक्ताची आशा असते. आणि भक्त कधी असं विचार करत नाही की मला शुद्ध भक्ती प्राप्त झालेली आहे. एक भक्त प्रत्येक वेळी हाच विचार करतो की माझ्यामध्ये एवढे कल्मश आहेत, माझ्यामध्ये एवढे अभद्र आहेत की कधी हे जे अभद्र माझ्या हृदयामध्ये जाईल, कधी मी भगवंताच्या प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त करू शकतो. आणि ही आशा एक भक्तामध्ये असते. रूप गोस्वामी आणि सनातन गोस्वामी एक शुद्ध उत्तम श्रेणीचे भक्त होते, पण जेव्हा ते चैतन्य महाप्रभू भेटायला आले तेव्हा त्यांनी असं व्यक्त केलं की आम्ही पापी आहोत, पतित आहोत. आणि कसे करून आम्ही तुमच्या चरणेखाली आहोत आणि आम्ही तुम्ही आम्हाला शरण द्या. आम्ही जगाय मदावून आणखी पतित आहोत. म्हणजे जगाय मदाय कमीत कमी त्यांनी एक मुस्लिम ची सेवा तरी नाही केली, पण आम्ही एका मुस्लिम नवाब हुसेन शाहच्या त्यांच्या राज्यामध्ये आम्ही कार्य केलं, पण आम्ही त्यांच्यावर आणखी पतित आहोत. आणि म्हणून आपला हक्क बनतो की तुमची कृपा प्राप्त करण्यासाठी, कारण तुम्हाला पतित पावन म्हटलं जातं. अशी एक आशा व्यक्त केली. तसं श्रील प्रभुपाद एकदा भगवंताच्या समोर थांबलेले आणि एक भक्त श्रील प्रभुपादच्या बाजूला होते, तर श्रील प्रभुपाद असे प्रार्थना करायचे आणि त्याने ऐकलं की काय प्रार्थना व्हायची, की भगवंत मला मायापासून दूर मायापासून दूर ठेवा, मला तुमच्या शरणीखाली ठेवा आणि मला मायापासून दूर ठेवा. तर भक्त विचलित झाले, म्हणले असं कसं. तर प्रभुपाद म्हणाले की माया शक्ती एवढी प्रबळ आहे की कोणीही कुठल्याही स्तरावर असलं तरी तो पतित होऊ शकतो. भरत महाराजचं उदाहरण, भरत महाराज भाव स्तराचे होते, पण कारण त्याची आसक्ती एका प्राणी डिअरला काय म्हणतात, हरण, हिरण, हरण ना, त्यांच्या हरिण, हरिणच्या प्रती आकर्षण झालं म्हणून काय झालं, त्यांचं पतन झालं. त्यामुळे माया शक्ती प्रबळ आहे, कधीही माया आपल्याला काय करू शकते. तर तेव्हा प्रभुपाद म्हणाले की माझी एवढीच एक भीती आहे की माझे जे शिष्य आहेत मायाच्या प्रती एवढी भय प्रकट करत नाहीत, कारण जोपर्यंत मायाच्या प्रती भय प्रकट होते तोपर्यंत आपण जास्त शरण आपण घेऊ शकत नाही भगवंतांच्या प्रती. आणि आशा जी आहे, ही आशा एक भक्त ठेवतो की माझी पतित अवस्था असूनही कसे करून मी भगवंताच्या प्रती मला शुद्ध प्रेम प्राप्त होईल, ही आशा व्यक्त करते. सहावा समुत्कंठ. समुत्कंठ म्हणजे इच्छा. इच्छा कशासाठी, की एक लक्ष्य प्राप्त करण्याची इच्छा, की कृष्ण प्रेम जे लक्ष असते एका भक्ताचं ते प्राप्त करण्याची तीव्र इच्छा, त्याला समुत्कंठ म्हटलं जातं. श्रील प्रभुपाद त्यांची ही तीव्र इच्छा होती की कसं मी माझ्या गुरु महाराजांची इच्छा मी पूर्ण करू शकतो, कसं मी भगवंतांच्या प्रती भगवंतांचं जे काय इच्छा असेल ते मी पूर्ण करू शकतो. आणि ह्या इच्छेने जे आहे प्रभुपाद अमेरिकेत गेले. प्रभुपाद म्हणाले की मी पाहिजे असेल तर मी परत गेलो असतो, त्यांच्याकडे रिटर्न तिकीट होतं. एकदा दोनदा ते परत त्या न्यूयॉर्कच्या हार्बरवर गेलेले परत जाण्याचे. म्हणजे की प्रभुपाद म्हणाले की ज्यांची इच्छा, म्हणजे माझी जी इच्छा एवढी तीव्र होती की प्रभुपादांची प्रभुपाद म्हणायचे की हे मला आदेश माझ्या गुरु महाराज दिलेलं की प्रचार करण्यासाठी पाश्चात्य देशात जाऊन, आणि ते इच्छा मला पूर्ण करायची होती. आणि एवढे नाही की प्रभुपादांची ही इच्छा होती की ह्या जीवात्माला पतित जीवांना कृष्ण देण्याची ही तीव्र इच्छा होती की कसं ह्या लोकांचा उद्धार होईल. ज्यांनी या जलदूत मध्ये प्रभुपादांचं हे सुंदर वर्णन आहे, मार्किने भागवत धर्म म्हणून त्यांनी एक गीत लिहिलेली आहे, आणि त्याच्यात इथे प्रभुपादांनी प्रभुपाद सांगतायत त्याचं भाषांतर बघा. त्यांच्या तीव्र इच्छेने गौरांग महापुरुषाच्या पवित्र नामाचा पाश्चात्य जगातील सर्व राष्ट्रांमध्ये प्रसार होईल. पृथ्वीवरील सर्व नगराधिक ग्राम तसेच सर्व महानगर नदी गले इसे सर्व छत्रच भगवान श्रीकृष्णांचा पवित्र नामाचा सर्वजण जप करतील. हे प्रभुपादांची इच्छा होती. श्री जसे श्री चैतन्य महाप्रभूंची महत कृपा जगाच्या दाही दिशा जिंकून टाकील तसे सर्व दिव्य आनंदाचा महापूर येईल. पापी आणि दुखी असे लोक जेव्हा पुन्हा आनंदी होतील तेव्हाच वैष्णवांच्या सर्व इच्छा पूर्ण होतील. जरी महाराज माझ्या गुरु महाराजांनी या आंदोलनाची स्थापना करण्याची मला आज्ञा दिली आहे तरी यासाठी माझी अजिबात पात्रता नाही. मी अतिशय पतित तसे नग्न आहे. म्हणूनच हे भगवंता मी आपल्याकडे कृपेची याचना करीत आहे की जेणेकरून मी या कार्यासाठी पात्र होईन, कारण आपणास सर्वात बुद्धिमान तसे सर्वात अनुभवी आहे. श्री गुरुची सेवा करून कोणीही परम सत्यास प्राप्त करू शकतो. तेव्हा आपण जर मला शक्ती प्रदान केली तर ह्या सेवेने मी आनंदी होईल तसे सौभाग्याने आपला संग्रही प्राप्त होईल. हे प्रभुपादांची इच्छा की कसं मी गुरु महाराजांची इच्छा पूर्ण करू शकतो आणि ह्या पतित जीवांचं उद्धार त्यांच्या कृपेद्वारे होऊ शकतो. कारण चैतन्य महाप्रभूंनी घोषणा केलेली पृथ्वीते आचियाते नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होईबे मोराना, हे चैतन्य महाप्रभूंनी घोषणा केलेलीच होती. पण ते कसं करावं हे प्रभुपाद प्रार्थना करायचे की मी एक कठपुतळी सारखं होईन तुमच्या हाताखाली, तुम्ही मला कसं पाहिजे तसं नाचवा, मी नाचेन असं प्रभुपाद येतो. प्रभुपादच्या हृदयामध्ये ही तीव्र इच्छा होती की कसं करून मी जे आहे भगवंताची. सातवं म्हणजे नाम गुणे सदा गाणे. एक भक्ताचं एक सिरियस भक्ताची एक पवित्र नामाच्या प्रती आसक्ती तो प्राप्त करतो. पवित्र नामाच्या प्रती आसक्ती निर्माण प्रभुपादांमध्ये एकच गुण होत, एक तर आपल्या गुरु महाराजांचा आदेश त्याच्यावर श्रद्धा आणि पवित्र नामामध्ये पूर्ण विश्वास. आणि त्या विश्वासाने प्रभुपाद पाश्चात्य देशात गेले. त्यांच्याकडे आणि काहीच नव्हतं, त्यांच्याकडे पैसेच नव्हते, 42 रुपये होते फक्त. त्या 42 रुपये फक्त त्याला $7 प्राप्त झाले असते. प्रभुपाद काहीच नव्हतं, फक्त काय होतं, दृढ विश्वास होता हरिनामावर, आसक्ती होती हरिनामावर. जेव्हा प्रभुपादांना संन्यास दिलं गेलं तर त्यांचे गुरुबंध होते अकिंचन कृष्णदास, आणि ते पूर्णप्रमाणे ते सदैव जे आहेत कृष्ण कीर्तन करायचे 24 तास. आणि ते होते प्रभुपादांना सेवा संन्यास मिळालं तेव्हा ते तिथे होते मथुरेमध्ये त्या आश्रममध्ये, आणि ते हळूच कीर्तन करत होते एका कोपऱ्यात रूम मध्ये. आणि प्रभुपादांना सिग्नल करायचं की वाढवा कीर्तन जोराने. आणि त्यांचे भक्तिप्रगट केशव महाराज कमी, आणि प्रभुपाद हळू, कारण प्रभुपादांना पूर्ण विश्वास होता की मी जे कार्य करायला चाललोय, मी संन्यास घेतोय फक्त एकच कार्यासाठी की पाश्चात्य देश मध्ये जाऊन माझा गुरु महाराजांचा आदेश पालन करण्यासाठी. आणि त्यांना एवढंच विश्वास होता की मी जे आहे माझ्याकडे काहीच नाही आहे, फक्त हरिनामचा विश्वास, तो विश्वास घेऊन मी जाणार आहे. टॉमस्क्विन स्क्वेअर पार्क न्यूयॉर्क मध्ये एका झाडाखाली प्रपात एकटेच बसायचे आणि हरे कृष्ण महामंत्राचं कीर्तन करायचे. हळूहळू एक व्यक्ती यायचा, त्याचा तो काय म्हणतो त्याला ऑर्गन, माउथ ऑर्गन घेऊन बसायचा. दुसरा आला तो बॉंगो घेऊन बसला. तिसरा आला दुसरा काही इन्स्ट्रुमेंट घेऊन बसला. असं करून मग हळूहळू लोक तिकडे गोळा व्हायचे आणि सगळे जे आहेत मग कीर्तन मध्ये भाग घ्यायचे. प्रभुपादाचं कारण की दृढ विश्वास होता हरिनामावर, त्यामुळे ते प्रभुपाद दुसऱ्यांमध्ये ते विश्वास करू शकले. एवढंही नाही, बघा प्रभुपादाने जेव्हा पहिल्यांदा लोकांना दीक्षा दिली तोपर्यंत त्यांना काय नियम पाळण करायचे काय नाही करायचे ते पण त्यांना माहीत नव्हतं. फक्त त्यांना एवढंच माहित होतं की हरिनाम जप करायचं, बस हरिनाम कीर्तन करायचं, हरिनाम हे करायचं, फक्त तेच करायचे. आणि ते हरिनाम मध्ये पूर्णप्रमाणे दीक्षा झाल्यानंतर मग ते बाहेर नोटीस म्हणून येत होतं की हे पालन करायला पाहिजे, हे काय नाही केलं पाहिजे, हे केलं पाहिजे असं करून. पण पहिलं म्हणजे प्रभुपादांनी हरिनामाचं प्रचार केला, कारण त्यांना स्वतः त्याच्यावर पूर्ण विश्वास होता. आणि आठवा म्हणजे आसक्ती, आसक्ती तत् गुणाख्या. म्हणजे आसक्ती कशावर? भगवंताच्या दिव्य लीला बद्दल चर्चा करण्याची, भगवंताबद्दल सांगणे, भगवंतांच्या बद्दल अनेक अनेक लीला बद्दल चर्चा करणे, त्याची आसक्ती. तर प्रभुपादामध्ये हे पण आसक्ती होती की मी कसं मी भगवंतांच्या बद्दल चर्चा करू. म्हणजे अनेक अनेक असे उदाहरण आहेत की जिथे प्रभुपाद कधी कधी असंच बसलेत आणि भगवंताबद्दल चर्चा करतायत. आणि हे प्रूफ आहे आमच्या समोर की प्रभुपादाने 80 व्हॉल्युम जे ग्रंथ लिहिलेत ते गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्ड मध्ये यायला पाहिजे. ऍक्च्युली असं कोणी केलं नसेल. 10 वर्षांमध्ये 80 व्हॉल्युम लिहिणं एक साधारण गोष्ट नाहीये. प्रभुपादाकडे एवढं काय होतं लिहिण्यासाठी? प्रभुपादाने श्यामसुंदरला सांगितलं एका गट्टा तयार केलेला, म्हणजे माझी इच्छा आहे की महाभारत आणि अनेक अनेक इतिहास पुराण त्याचं पण भाषांतर करण्याची इच्छा आहे. पण करू शकले ना ते, ठीक आहे त्यांचे शिष्य करतायत. पण प्रभुपादांची ही इच्छा तीव्र होती की भगवंताची जे अनेक लीलाबद्दल सांगायची इच्छा, वर्णन करण्याची इच्छा होती. आणि त्यांची तीव्र इच्छा असल्यामुळे आम्हाला ह्यांचा फायदा होतोय. श्रीमद भागवतम, चैतन्य चरितामृत, चैतन्य चरितामृत प्रभुपादांनी 2 महिन्यामध्ये तयार केलं प्रभुपादांनी, म्हणजे शिष्याने प्रभुपादांच्या आदेशवर चैतन्य चरितामृत. कृष्ण पुस्तक जे आहे प्रभुपादाने पहिलं लिहिलं कृष्ण पुस्तक, कारण प्रभुपादांना माहित होतं की कितीपर्यंत मी कम्प्लीट करू शकतो. मग नंतर मग प्रभुपादाने मग विस्तारित रूपेत श्रीमद भागवतांचं जे आहे भाषांतर केलं. पण त्यांच्या ती तीव्र इच्छा होती. तर एक भक्त आहे जो सिरियस भक्त आहे तो प्रत्येक वेळी जो आहे भगवंताबद्दल वर्णन करण्याची त्याची इच्छा असते, मग त्याप्रमाणे तो प्रचार तसंच करतो. आणि शेवटचं म्हणजे प्रीती तद् वसती स्थले, म्हणजे जिथे ते भगवंतांनी असे लीला केलेत त्याच्या प्रती आकर्षण, त्याच्या प्रती प्रीती. प्रीती तद् वसती स्थले, जिथे ते भगवंतांनी, भगवंत जिथे राहिले, भगवंत जिथे ज्यांनी लीला केली त्याच्या प्रती जे आहे आकर्षण. आणि हे प्रभुपादांची असीम कृपा की आपल्याला जे आकर्षण आपल्या हृदयामध्ये वृंदावन, मायापूर, जगन्नाथपुरी अशा धाम च्या प्रती आकर्षण करण्यामध्ये प्रभुपादांचं ह्याच्यात त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन आहे. कारण जोपर्यंत म्हणजे प्रभुपाद जेव्हा कृष्ण लीला बद्दल जेव्हा सांगायला सुरू केलं, यमुना माताजी सांगतायत की प्रभुपादांनी जेव्हा त्यांना सांगितलं, जेव्हा 1970 साली यमुना माताजीने गुरुदासा सांगितलं की मी तुम्हाला घेऊन जाईन वृंदावन आणि तुम्हाला अनेक अनेक लीला जिथे जिथे भगवंतांनी लीला केली ते सगळे तुम्हाला दाखवेन. आणि यमुना माता म्हणतात की जेव्हा प्रभुपादाने सांगितलं तेव्हा आपल्याला फक्त असं कल्पना होती की काय काय, पण जेव्हा प्रभुपाद पहिले त्यांना घेऊन गेले वृंदावन आणि वृंदावनात राधा दामोदर मंदिर मध्ये प्रभुपाद राहिले आणि टेरेसवर रोज जे आहेत उपदेश अमृतवर प्रभुपाद चर्चा करायचे आणि मग अनेक असे स्थल भगवंतांनी जिथे लीला केले त्या स्थळावर प्रभुपाद घेऊन जायचे. तर यमुना माताजी म्हणाले की आपलं जे हृदय शुद्धीकरण व्हायला लागलं, आपल्याला जे प्रभुपादांची जे भेट दिली आपल्याला जे काय अनुपम, आपण कधी असा विचार करू शकत नाही आपण असं गेलो असतो किंवा याच्या प्रती आपण आकर्षित झालो असतो. आणि ह्या प्रभुपादांनी आपल्या पुस्तकांद्वारे आपल्या जे वर्णन केलेल्या ज्या लीलेद्वारे आपलं मन आकर्षित करूच जे आहे, आपण वृंदावन असं स्थळामध्ये गेलं की आपल्याला आपलं मन पूर्ण आकर्षण होऊन जातं. आणि हे एक भक्ताचं लक्षण आहे की कसं आहे भगवान जिथे लीला केली ते लीलाच्या प्रती आकर्षण होणे. आणि असं आकर्षण होण्यासाठीच आपण कथा ऐकतो, दिव्य कथा कृष्ण कथा जेव्हा आपण ऐकतोय तेव्हा हळूहळू जे आहेत आपण अशा ज्या गोष्टी त्यांच्या प्रती आपण आपलं मन आकर्षण होतो, त्यामुळे आपल्याला हे ऐकणं आवश्यक आहे. कृष्ण कथा जिथे जितका आपण ऐकतो तितका कमी, जितका ऐकतो आणखी ऐकायची इच्छा असते, आणखीन ऐकायची इच्छा असते. हा, ते एक भक्ताचं लक्षण आहे. म्हणजे समजायचं की जेव्हा तुमचं आकर्षण भगवंतांच्या प्रती भगवंतांच्या कथा ऐकण्याची इच्छा वाढते तुमच्या हृदयामध्ये, समजायचं की तुमचे आकर्षण पण वाढते भगवंताच्या प्रती भगवंतांच्या दिव्य गुण रूप नाम लीला अशा. तर आता राधा गोपीनाथ प्रभू जे आहेत आता 2 तास तुम्हाला पूर्णप्रमाणे भगवंतांच्या दिव्य लीलावर चर्चा करणार आहेत आणि आपलं मन आकर्षण करणार आहेत. हरे कृष्णा.
हरे कृष्ण। मुरलीधर प्रभु ने भगवान के एक भक्त का लक्षण बताया और उसमें एक था आसक्तिस्तद गुणाख्यान, कि भगवान के गुण की गुणगान करने में आसक्त रहना। भगवान के चैतन्य महाप्रभु के एक महान भक्त हुए वासुदेव घोष, उन्होंने एक सुंदर भगवान की सुंदर लीलाओं का वर्णन करते हुए एक भजन लिखा है, उस भजन का कीर्तन करेंगे और इस भजन पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए और इस लीला का स्मरण करने की कोशिश कीजिए। सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सो है वैजयंती माला, सुंदर कुंडल मधुर विशाला, सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सो है वे जयंती माला, छवि की बलिहारी राधे श्याम श्याम श्याम, माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्याम केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम, जय केशव कलिमल हारी राधे श्याम श्याम श्याम, गले सो है वे जयंती माला, सुखदेव गोस्वामी पूर्ण रूप से विरक्त भक्त थे, ब्रह्म ज्ञान में लीन हुए थे, भौतिक संसार से उनसे कुछ लेना देना नहीं था, पर जब भगवान की सुंदर लीला और स्वरूप का लक्षण देखे तो इतने मोहित हो गए भगवान के प्रति कि व्यासदेव जी के पास आकर संपूर्ण भागवत का सुने तथा और परीक्षित को फिर सुनाए। यह छवि की बलिहारी, बलिहारी हो गए वो, सुंदर कुंडल नयन विशाला गले सो है वे जयंती माला, यह छवि की बलिहारी राखे श्याम श्याम श्याम।
जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामाचार जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामाचार दधी खायो कब हूँ मधुबन रास रचायो
भगवान को किसी चीज की चोरी करने की कोई जरूरत नहीं षडैश्वर्य पूर्ण भगवान है फिर क्यों चोरी करते हैं सच में वो मक्खन की कोई जरूरत नहीं थी उस माखन के द्वारा गोपियों के हृदय को पूर्ण रूप से हर लियो मनोहर पूरी दुनिया मदन के पीछे पागल है पर मदन मोहन जी अपने मन को भी हर लेंगे जब वो मक्खन जैसे एकदम मुलायम हो जाएगा प्रेम भक्ति से
कब हूँ लुट लुट सभी खायो कब हूँ मधुबन रास रचायो गधीत आयो कब हूँ मधुबन रास रचायो नाचत विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामाचार माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामाचार जय केशव कलिमल हरि राधे श्याम श्यामाचार धेनु चराई वन वन भ्रमत फिरे जदुराई
साधारणतः भगवान क्षत्रिय परिवार में जन्म लेते हैं जब धर्म से ग्लानी हो जाती है परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम पर गो ब्राह्मण ने हिताय च गो सेवा और अपने ब्राह्मण मित्रों की सेवा इसमें ये आनंद लेने के लिए पैदा होते ही अवतरित होते ही सीधे वृंदावन में चले गए और ग्वाल वालों के साथ गैयों की सेवा करने लगे
कब बाल बाल संग धेनु चराई वन वन भ्रमत फिरे जदुराई कांधे काम कांधे कामर का लीला के श्याम श्यामा केशव कलिमल हारी राधे राम श्यामा श्याम चूरा चूरा नव नीत जो खायो रजेवनी संपय नाम धरायो चुरा नव नीत जो आयो रजवनी संप नाम करायो माखन चोर मुरारी राधे ऊपर गोवर्धन धारो एक दिन मान इंद्र को मारो
वसुदेव घोषी कह रहे एक दिन मान इंद्र को मारो हम भी छोटे मोटे इंद्र हैं कोई अपने घर का इंद्र समझता है अपने आप को कोई अपने कंपनी का इंद्र समझता है कोई अपनी इंद्रियों का इंद्र समझता है पर भगवान ऐसे सुंदर लीला करते हैं इंद्र को एक निमित्त बनाकर और दिखाते हैं कि अंत में सबके इंद्र वही हैं जो इंद्र ने स्वीकार किया कि प्रभु आप ही इंद्र हो आप ही मूल इंद्र हो देवेंद्र जब तक ये इंद्र की भावना हम नहीं छोड़ते तब तक भगवान की सेवा हमें नहीं मिलेगी सबसे बड़ी बाधा आध्यात्मिक जीवन में यही है कि इंद्र भाव महेंद्र भाव देवेंद्र भाव इसे त्याग देना
एक दिन मान इंद्र को मारो नख ऊपर गोवर्धन धारो नाम पढ़ो गिरधारी नाम पढ़ो गिरधारी
बंधन का भोग न खायो, रुख साख सिदुर घर खायो। दुर्योधन का भोग न खायो, रुख साख सिदुर घर खायो। दुर्योधन का भोग न खायो, भगवान गीता में कहते हैं, एक श्लोक है जिसमें कहते हैं तीन बार कि प्रेम भक्ति के द्वारा मैं किसी चीज को स्वीकार करता हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान को प्रसन्न करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इसलिए नहीं है, कोई बड़े बड़े गुणों की जरूरत नहीं है, हमें एक ही जरूरत है, हृदय में प्रेम हो। रूप गोस्वामी कहते हैं मृगारी का कौन सा आचरण था, ध्रुव महाराज का कौन सा वयस था, 5 साल के थे। व्याधस्याचरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्र से क्या, कौन सा विद्या था गजेंद्र के पास। कुब्जाया किमु नाम रूप चरितम, कुब्जा के पास कौन सा रूप था, कौन सा रूप गुण था, कौन सा चरित्र था। किम सुदामनो धनम, सुदामा के पास कौन सा धन था। भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणे भक्ति प्रियो माधव, भगवान हमारे हृदय में वो प्रेम, वो निस्वार्थ प्रेम, केवल कृष्ण को प्रसन्न करना कि प्रभु मैं आपका हूं, आपकी संतुष्टि मेरी संतुष्टि, आपका सुख मेरा सुख, और उस प्रेम से प्रभु बिक जाते हैं।
दुर्योधन का भोग न खायो, रुख साख सिदुर घर खायो। दुर्योधन का भोग न खायो, रुख साख सिदुर घर खायो। ऐसे प्रेम पुजारी राधे पुकारी पट मेली पट गए वन माली। करुणा कर द्रौपदी पुकारी पट मेली पट गए वन माली।
गुनगुना कर द्रौपदी पुकारी। बार बार ये आचार्य इस सुंदर दृश्य का उदाहरण देते हैं। एक क्षण के लिए मन में सोचिए, राजकुल की स्त्री ऐसे लज्जा से और ऐसे उच्च कुल में पैदा हुई, किस अवस्था में उसे दुर्योधन ने देखना चाहा, और सब कुछ होते हुए भी, पांच शक्तिशाली पति ये सब होते हुए भी, वो बेचारी अबला अपने आप के संरक्षण नहीं कर पाई। और तब ये जानते हुए कि हमारा एकमात्र आश्रय भगवान का स्मरण है, अपूर्ण मग्न होकर निस्सहाय भाव से जिस प्रकार हम कल चर्चा कर रहे थे कि दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ, अपूर्ण रूप से मैं आपके शरण आई हूं प्रभु, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास प्रति हुआ अधिकार। जब तक इस भावना से हम हरिनाम नहीं लेते तब तक भगवान की कृपा उस नाम के द्वारा हम महसूस नहीं कर पाएंगे, हम आस्वादन नहीं कर पाएंगे।
करुणा कर दो परी पुकारी, पट मेली पट गए वन माली, पुकारी पट में लिपट गए मन माली, निरख रहे नर नाची राधे राम तमाशा, निरख रहे नर नारी राधे राम तमाशा, जय माधव मदन मुरारी राधे राम तमाशा, जय केशव धनमन हारी राधे राम तमाशा, भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम खाए द्वारे, भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ताड़े द्वारे,
वासुदेव घोर जी कह रहे हैं कि हे प्रभु भक्त भक्त सब तुमने तारे, कितने महान भक्तों के लक्षण, भक्तों के गुणगान हम सुनते हैं भागवत में और सारे शास्त्रों में, गजेंद्र से लेकर बहुत सारे भक्त भक्त सब तुमने तारे, पर दुर्दयनीय स्थिति हमारी स्थिति यह है, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे। मुरलीधर प्रभु ने भी बताया, आशा बंध और समुत्कंठा, आशा नहीं है कि हमारे हृदय में कभी भक्ति आएगी, एक भक्त अपने आप को भक्त नहीं समझता, जो अपने आप को भक्त समझता है उसे भक्ति में बहुत दूर जाना है। गोपी भर्तुर पद कमलेव दास दासानुदार। भक्ति बहुत ऊंची बात है, भगवान नहीं देते ये भक्ति। क्यों? क्योंकि अगर दे दिए तो खुद बिक जाएंगे उसके पीछे। इसीलिए श्री कृष्णा आकर्षणी चसा, भक्ति से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। ये पहला इंस्टॉलमेंट है, आपका जीवन शुभ हो जाएगा, मोक्ष कम लगने लगेगी। पर वो प्रेम भक्ति जिसके द्वारा भगवान खुद बिक जाते हैं वो मिलना बड़ा मुश्किल है, सुदुर्लभ, बहुत ही दुर्लभ है। पर महाप्रभु की कृपा है कि अगर निरपराध भाव से उनकी आश्रय लेने की कोशिश करें तो निश्चित रूप से एक न एक दिन आशा बंध कभी न कभी समुत्कंठा उत्कंठा के साथ अगर हम सेवा करते रहें एक न एक दिन वो जब हमें स्वीकार करेंगे तब शायद हम भी तर जाएंगे। तो वसुदेव घोष जी उस भावना से यहां कह रहे हैं, भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे। भक्त भक्त सब तुमने तारे, बिना भक्ति हम ठाड़े द्वारे। जो खबर हमारी आते के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ आकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। ध्यान कीजिए, अर्जुन के रथ हाकन हारे, दोनों गीता में और भागवत के प्रथम स्कंद में भगवान अर्जुन के रथ के हाकने के द्वारा ही प्रवेश करते हैं। ये कोई सोच नहीं सकता। कई धर्मों में, दूसरे धर्मों में वर्णन है कि भगवान महान है, पर उनकी महानता क्या है? सबसे बड़ी महानता तो वैदिक संस्कृति से हम जान पाते हैं, वो है भक्त वत्सल का। किसी एक का रथ को हांकना बहुत नीची बात है। रथ हांकना मतलब किसी का नौकर, किसी का नौकर बनना। इस भौतिक संसार में भी ये शब्द नौकर कोई उपयोग नहीं करता, पर भगवान अपने आप को अर्जुन के रथ हांकने में बहुत आनंद लेते हैं। हर एक गीता के ऊपर यही चित्र डाला गया है कि अर्जुन ने प्रभु कृष्ण को अपना सारथी बनाया और अपने आप को पार्थ सारथी कहने में बहुत आनंद लेते हैं भगवान। जो ये रहस्य जान गया वो गीता को जान गया। चैतन्य महाप्रभु की लीला में एक अनपढ़ ब्राह्मण था श्रीरंगम में, साउथ दक्षिण भारत में, जिसे गीता पढ़ना नहीं आता था। महाप्रभु ने उसे पूछा, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों है? बोले, मुझे गीता पढ़ना नहीं आता, मेरे गुरुजी ने बोला है हर रोज पढ़ो गीता और मैं पढ़ता हूं, समझ तो कुछ नहीं आता। तो बोले, रोते क्यों हो फिर? बोले, हर एक पन्ने में मेरे एक ही चित्र नजर आता है, अर्जुन रथ पर सवार है और भगवान श्री कृष्ण उसके रथ हांक रहे हैं। जब मैं ये दृश्य देखता हूं, ये चित्र देखता हूं, तो मेरी आंखों में आंसू आती है। क्या महान है हमारे प्रभु जो अपने भक्तों की भक्ति करने में आनंद लेते हैं। बोलो भक्त भत्सल भगवान श्री कृष्ण की।
अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। अर्जुन के रथ हाकन हारे, गीता के उपदेश तुम्हारे। चक्र सुदर्शन धारे, चक्र सुदर्शन धारे
भगवान की। ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्ता राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तत्कांचन गौराङ्गी राधे रमणेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो जय। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब लोग सांस लीजिए और बांध के रखिए क्योंकि अभी दर्शन खुलने वाला है।
Thank you.
आज हम भागवत के दशम स्कंद का ये दूसरा अध्याय जो देवताओं द्वारा गर्भस्व कृष्ण की स्तुति है, इसके एक श्लोक पर चर्चा करेंगे। स्वयं समुत्तीर्य सुदुस्तरं द्युमन भवार्णवं भीममदभ्रसौहृदा भवत्पदाम्भोरुहनावमत्र ते निधाय याता सदनुग्रहो भवान्। हे द्यतिपूर्ण प्रभु, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए सदा तैयार रहते हैं, इसलिए आप वांछा कल्पतरु कहलाते हैं। जब आचार्य गण अज्ञान के भयावह भव सागर को तरने के लिए आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं तो वे अपने पीछे अपनी यह विधि छोड़े जाते हैं जिससे वह पार करते हैं। क्योंकि आप अपने अन्य भक्तों पर अत्यंत कृपालु रहते हैं, अतएव उनकी सहायता करने के लिए आप इस विधि को स्वीकार करते हैं। भगवान का अवतरण जो भगवान गीता में बताते हैं उसका उद्देश्य क्या है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थ। तत्पश्चात भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नहिति मामेति सोऽर्जुनः। कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति ये जान लेता है कि मेरा जन्म और मेरा कर्म पूर्ण रूप से दिव्य है, यानी इस भौतिक संसार के नियमों से परे है, त्यक्त्वा देहं, उसके फल स्वरूप इस शरीर के छोड़ने पर पुनर्जन्म नहिति, फिर से इस जेल रूपी कारागृह बंदी बनाया हुआ इस भौतिक संसार में जन्म ले लेता, बल्कि मामेति सोऽर्जुनः, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। जैसे अभी प्रभु जी ने बताया, भगवान की लीला अंततः हमारे हृदय को आकर्षण करने के लिए और साथ ही साथ अपनी लीलाओं द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ सीख सिखाने के लिए अवतरित होते हैं। उन्हें यहां अवतरण होने का कोई जरूरत नहीं है, अपनी लादिनी शक्ति के द्वारा वो प्रकट होते हैं स्वेच्छा से। कभी कभी कोई उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकता है कि आप आना ही पड़ेगा, और अगर वो आ रहे हैं तो कोई नकार नहीं सकता हूं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भगवान नहीं आ ही नहीं सकते भौतिक संसार में, अगर आए तो भगवान है ही नहीं। क्यों नहीं? अगर कोई भी चीज है जो भगवान नहीं कर सकते तो भगवान कैसे हो? पर साथ साथ इन लीलाओं के द्वारा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व ज्ञान सिखाते हैं जो हमारी भक्ति के लिए बहुत ही लाभदायक है। जैसे दशम स्कंद में बहुत ही विस्तृत रूप से भगवान के जन्म और उनके संपूर्ण लीला की चर्चा हुई है, और उसमें सुखदेव गोस्वामी भगवान के जन्म का, हालांकि बहुत सारे कारण हैं, एक कारण बताते हैं कि एक बार माता पृथ्वी ने अनुभव किया कि उनका बोझा बहुत हो गया है, भार बढ़ गया है, और उस भार से बहुत तकलीफ महसूस कर रही है, त्रस्त हो गई है। तो पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई और अपना स्थिति सुनाया, और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर में गए। पृथ्वी को बोझा क्यों हुआ? कुंती महारानी कहती है भारावतारणाय अन्य भूगो नाव इबोधव। जिस प्रकार एक बहुत बड़ा नाव में बोझा बढ़ जाता है तो वो डगमगाने लगता है और डूबने की शंका बढ़ जाती है, इस तरह से पृथ्वी का भार जब बढ़ गया तब वो ब्रह्मा जी को लेकर ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर भगवान के पास गए, विष्णु के पास, शिव सागर में। पृथ्वी का बोझा क्यों बढ़ता है? पृथ्वी पर बड़े बड़े पर्वत, हिमालय जैसे पर्वत हैं, पृथ्वी पर बड़े बड़े समुद्र हैं, बड़े बड़े वृक्षों वाले वन हैं, इन सब का बोझा मनुष्य से कई गुना ज्यादा है। बड़े बड़े इमारतें हैं, खास करके आजकल, तो ये बोझा है। पर ये क्यों बोझा नहीं लगता उसे, और क्यों ऐसे मनुष्य जो चींटी के समान इस पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, आप कभी प्लेन में गए हो और या पहाड़ के ऊपर से नीचे देखो, क्या है ये आदमी लोग, चींटी जैसे दिखते हैं, गाड़ियां चींटी जैसे दिखती है, और गाड़ियों के अंदर बैठे हुए ड्राइवर दिखते भी नहीं है वो, बल्कि बड़े बड़े पहाड़ नजर आते हैं, बड़े बड़े नदियां समुद्र नजर आती हैं। तो बोझा कैसे बढ़ जाते हैं? तो यह समझा गया है बहुत सरल उदाहरण द्वारा, हम समझ सकते हैं। माता बच्चों को जन्म देती है, पर जब बच्चा कृतघ्न अपने माता पिता के प्रति जो ऋण है उसके प्रति कृतज्ञ न होकर माता की दी हुई सारी संपत्ति को गलत तरीके से उपयोग करता है और पिता को नकारने लगता है, पिता के विरुद्ध बातें कहने लगता है, तो माता को उस बच्चे का देखभाल करना एक बहुत बड़ा बोझा हो जाता है। 10 बच्चों को देखभाल कर सकती हो, वो प्रेम का बोझा है वो, पर जब वो बच्चे पिता की इच्छा के विरुद्ध जाते हैं तो माता को बहुत बड़ा बोझ महसूस होता है। बोझ किस चीज का? कि मेरा सर्वस्व है, इन सबको मैंने जन्म दिया है ताकि वो पिता की अच्छी तरह से सेवा करें, और उनका जो बिजनेस है वो बढ़ाए, माता खुशी होती। इसी तरह से परम पिता भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार में वो बच्चे जो न केवल जानते हैं कि पिता का उद्देश्य क्या है, इस भौतिक संसार का रचने का उद्देश्य यह है कि हर एक बद्ध जीव को मौका मिले वापस भगवत धाम जाने के लिए, उसमें अगर मदद करते हैं तो पृथ्वी इतनी खुशी होती है और सारे समृद्धि प्रदान करती है। पर वही जब पृथ्वी से सारे धन संपत्ति को लेकर उससे बल प्राप्त करके और उस बल को भगवान के विरुद्ध, परम पिता के विरुद्ध जब व्यक्ति व्यवहार करने लगता है, तो वो एक भी व्यक्ति का बोझा माता पृथ्वी के लिए बहुत वजनदार हो जाता है। तो फिर तब क्या कहना जब आधे से ज्यादा संख्या आसुरिक प्रवृत्ति के होने के कारण करोड़ों करोड़ों की संख्या में सेना और सिर्फ अपने अहंकार को जमाने के लिए पशु के समान, एक कुत्ते के समान, जैसे कुत्ते हम देखते हैं एक दूसरे पे भौंकते रहते हैं, ये मेरा है, इधर से निकल, मेरा गली है, दोनों का गली नहीं है, कोई लकड़ी लेके हांकता है दोनों भागते वहां से। तो इस तरह से जब आसुरिक प्रवृत्ति के लोग एक छोटा सा एक कुछ लकीर मारकर कहते हैं कि ये मेरा है, और उस अहंकार और उसको बचा के रखने के लिए करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोगों को, सेना को एकत्रित करते हैं सिर्फ अपने अहंकार को बनाए रखने के लिए, और भगवान के विरुद्ध जाते हैं, अपने आप को भगवान घोषित करने लगते हैं, और अपने माता का ही शोषण करने लगते हैं, तब माता को बहुत दुख होता है। और तब वो जाती है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। तो सारे देवताओं को लेकर, इंद्र आदि देवता मेंटेनेंस इंचार्ज हैं भगवान विष्णु के प्रतिनिधित्व के रूप में, और शिव जी जो है संहार करने के इंचार्ज हैं, और वो खुद ब्रह्मा जी सृष्टि के इंचार्ज, तो सबको लेके जाते हैं। बोले चलो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाते हैं, सीईओ, और वो संभाल लेंगे, क्या हमारे सर से हमारे इससे बाहर गया है नियंत्रण से। और तब भगवान सब जाते हैं, और भगवान अवतरित हुए पृथ्वी का इस बोझा हल करने के लिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इसी तरह से आज पृथ्वी का बोझा बढ़ गया है, कई गुना ज्यादा बढ़ा है उसमें से। उस समय में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि अमेरिका 65% ऑफ इकोनॉमी स्पेंट फॉर मेंटेनिंग द आर्मी, 65% जो इकोनॉमी है सिर्फ मिलिट्री को मेंटेन करने के लिए। हाँ, हम देखते हैं समाज में, बंबई में आजकल जब से बम विस्फोट होने लगे हैं, कितना बड़ा बोझा हो गया है उस शहर पे। सब जगह सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। कुछ लोगों ने कहीं बम उड़ा दिया, बम विस्फोट करा दिया, कई लोग मारे गए। पूरे बंबई में एयरपोर्ट में जाओ, ट्रेन में जाओ, रेलवे में जाओ, इधर जाओ, किसी के घर में जाओ, हमारे मंदिर में भी सबको चेकिंग करना पड़ता है। उसके लिए हजारों करोड़ों रुपया सिक्योरिटी के लिए खर्चा कर रहे हैं। सिक्योरिटी का बिजनेस बहुत बढ़ गया, लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। क्यों? सबको, दे आर ऑल हैरेस्ड, सबको चेक किया, बम तो नहीं। अरे मैं इतने समय से आ रहा हूं यहां, क्या बम ले आऊंगा, क्या करें, अब करना पड़ता है। तो कुछ लोगों के कारण इतना बड़ा बोझा होता है सरकार के ऊपर, और इतने पुलिस की हाथ, अल्टीमेटली स्टेट गवर्नमेंट संभाल नहीं सकी तो अभी सेंट्रल के पास गई, सेंट्रल गवर्नमेंट से चाहिए हमको। उत्तर भारत में नक्सलाइट का प्रॉब्लम, इधर बम विस्फोट का प्रॉब्लम, तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट संभाल नहीं पाए, तो ब्रह्मा जी बोले चलो सेंट्रल गवर्नमेंट मिल जाते ऊपर, वहां जाके निवेदन करेंगे। और तब इस बोझा को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। ये कारण रूपा जी कहते हैं कि आज इस परिस्थिति को दूर करने के लिए कृष्ण भावनामृत संघ में कृष्ण प्रकट हुए हैं। वैयक्तिक रूप से और सामूहिक रूप से हम देखते हैं कि जब हम कृष्ण को अपनाते हैं, कृष्ण को अपने हृदय में अवतरित होने के लिए एक अवकाश देते हैं, तो हम हल्का महसूस करते हैं। ये तो ये शरीर बहुत बोझा है, एक तो 50-60-70 किलो का है, इसमें से आत्मा निकल जाए तो चार लोगों को उठाना पड़ता है, यही शरीर। पर ये केशाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, एक छोटी सी आत्मा, केश के अग्रभाग के 10,000 टुकड़े का एक टुकड़ा आत्मा अगर है, भगवान का एक अंश, तो ये शरीर भागता है, दौड़ता है, ओलंपिक में हाई जंप करता है, और इसी शरीर को वो आत्मा निकल जाए तो उठाने के लिए चार लोग चाहिए। और अगर ज्यादा मोटा हो तो हर एक 20 फुट या 20 मीटर जाने के बाद कंधे बदलने पड़ते हैं। हाथी के इसमें भी, पर कभी कभी आत्मा होते हुए भी मानसिक रूप से विचलित होने के कारण इतना बड़ा बोझा हो जाता है, डिप्रेशन। डिप्रेस मतलब दब जाना। क्यों दब गए? बहुत सारी चिंताएं। पर वही जब कृष्ण को अपने हृदय में अवतरित होने को देते हैं हम, तो सबसे पहला एक होता है हल्कापन महसूस होता है। हम कभी कभी चौपाटी में जाते हैं वहां बंबई में और लोगों को नृत्य करने को बोलते हैं, हरि नाम करो, नाचो नाचो। नाचने तो दूर की बात, हाथ उठता नहीं है लोगों का, सही में हाथ उठता नहीं है, ऐसे मुरझाए मानो सर के ऊपर एक टन कोई बोझा रख दिया है, ऐसे खड़े रहते, कुछ है नहीं, पर कहां से ये बोझा महसूस हो रहा है। और वही हम देखते हैं जो कृष्ण भावना में आते हैं, चैंट एंड बी हैप्पी। रूपा ने कहा चैंट एंड बी हैप्पी, हरे कृष्ण जपो और सदा प्रसन्न रहो। प्रसन्न तब होता है जब हमें मालूम है कि हमारा देखभाल करने वाला कोई है। ये दो शब्द हैं अनाथ और सनाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। नाथ यानी मेरे करोड़पति बाप है, कोई चिंता नहीं मुझे, कोई भी समस्या हो तो सिर्फ एक फोन कॉल करूंगा ना, वो फोन कॉल कर दिए तो सब दूर हो जाएगा, क्योंकि उनका बहुत पहचान है, बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति है। कभी हम देखते हैं कोई गुंडे लोगों को बड़ा बड़ा पहचान होता है, पुलिस से भी नहीं डरते, क्यों? अंदर करते देखता हूं, एक मिनट में बाहर आ जाऊंगा मैं, क्योंकि इतना बड़ा पहचान है मेरा, ऊपर बड़े बड़े गुंडे, इसका विकृत प्रतिबिंब ये। तो इस तरह से प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के समाज में घुसकर वहां बैठे हुए हैं, पर एकदम निश्चिंत है, जबकि हिरण्यकशिपु हमेशा चिंतित रहता था जब कुछ होते हुए। तो वैयक्तिक रूप से अगर कृष्ण हमारे जीवन में अवतरित हुए तो भी हमारा बोझा हल्का हो जाता है, और समाज में, भक्तों के समाज में और जनसाधारण के समाज में भी अगर हम कृष्ण भावना जितना ज्यादा लोगों के जीवन में ये मौका प्रदान करेंगे, भक्ति जिसके द्वारा भगवान अवतरित होते हैं किसी के हृदय में, तो फिर एक्चुअली वो प्रगति कर सकते हैं, हल्कापन महसूस कर सकते हैं, खिल जाएंगे, फूल खिलते हैं ऐसा उनका चेहरा खिल जाता है। और एक सबूत है, मैंने देखा हुआ है, लोगों के चेहरे आप देखेंगे, अगर वो किसी कारणवश भक्ति नहीं कर रहे हैं तो तुरंत उनके चेहरे देख के समझ में आता है कि कुछ गड़बड़ी है, और जो सही तरह से कृष्ण भावना को अपना रहा है खुश है, आनंदित है। तो इस तरह से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार एक बार भगवान ने देवकी और वसुदेव को एक माध्यम बना के अवतरित हुए। वो तो देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ, और उस समय डौरी की प्रथा है पारी बरहम, 5000 साल पहले भी था। रूपा जी लिखते हैं दिस इज वैदिक सिस्टम, इट इज वेरी लीगल डाउरी। ऑफकोर्स दुर्भाग्यवश आज उसका गलत हर एक चीज का वैदिक संस्कृति में लेके हम लोग अपने अपने स्वार्थ में डाल के उसको बिगाड़ देते, चाहे वर्णाश्रम हो, चाहे डाउरी हो, चाहे जो भी हो। तो वो देवक महाराज ने 4400 हाथी, आप कहेंगे हाथी हमको क्या फर्क पड़ता है, पर मैं कहूंगा 4000 स्कॉर्पियो दिए थे। अच्छा 400 स्कॉर्पियो गाड़ी, हाथी जैसा रास्ते पे हाथी जैसा चलता है। एक भक्त ने बताया बोले स्कॉर्पियो ले रहा हूं क्यों, बोले हाथी जैसा है वो, जब जाता है तो सब लोग साइड में हो जाते हैं, ये गाड़ी जब जाता है तो। 10000 घोड़े फर्स्ट क्लास, अच्छे मोटरसाइकिल समझ लीजिए, कोई डौरी ने अगर 400 स्कॉर्पियो गाड़ी या पेजेरो, 10000 बेस्ट मोटरसाइकिल जो भी ब्रांड अभी नया चल रहा है, 1800 रथ, इसकी तुलना क्या करेंगे, साइकिल रथ यानी बहुत ही अच्छे अच्छे गाड़ी, उससे भी बड़े गाड़ी, बस कहीं मिनी बस, और 200 मेड सर्वेंट्स, उनके दासियां, सहेलियां राजा के साथ हमेशा और रानी के साथ हमेशा सहेलियां रहती थी उनके, इतने दिए थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं क्योंकि वैदिक संस्कृति के अनुसार पुत्र को सारा जो हमारा संपत्ति है, धन संपत्ति पुत्र के नाम पे जाता है, तो पुत्री को बड़े प्रेम से स्वेच्छा से पिता भेजते वक्त अपने माई ससुर के यहां उन्हें प्रेम से कुछ उपहार देते थे बड़े पैमाने पे, एकदम दिल खोल के। तो इस तरह से देवकी निकली और बड़ा महत्वपूर्ण यहां एक और एक चीज सीखने को मिलता है। कंस देवकी का भाई बड़े प्रेम पूर्वक पूरे, अब देखिए बड़े किसी की शादी हो रही हो ऐसे ऐसे दो वंशों में श्रेष्ठ भोज वंश यदु वंश ऐसे मान वंशों के और राजाओं के बीच तो बहुत बड़े पैमाने पे शादी हो रही है साहब, और कंस आया और रथ सवार है अपना प्रेम दिखा रहा है देवकी के प्रति और घुड़सवार होके छोड़ने जा रहा है। क्या प्रेम, कितना अफेक्शन। और जैसे निकल दे एकाएक आकाशवाणी हुई कि मूर्ख इसी देवकी के जिसे तू ले जा रहा है इसका आठवां पुत्र तेरा काल साबित होगा, आठवां गर्भ, आठवां पुत्र नहीं बोले कि पुत्री होने वाले थे असली उसको लगने वाला था, तो उन्होंने कहा आठवां गर्भ तेरा काल साबित होगा। अब अभी अभी हमारे मुरलीधर प्रभु ने बड़े सुंदर से बताया कि पहला भक्त का लक्षण है क्षांति, टॉलरेंस। और यहां हम देखते हैं क्या प्रेम जता रहा है कंस देवकी के प्रति। जैसे पता चला कि मेरे स्वार्थ में यह बाधा होने वाली है, मेरे विषय भोग में, मेरे इंद्र तृप्ति में यह बाधा होने वाली है, सारा उसका प्रेम दूर हो गया। क्योंकि स्वार्थ के बीच में अगर बाधा आ गया तो कंस का मूल स्वरूप बाहर आया। जिस हाथ से वो एक हाथ में घोड़े के रस्सी लिया हुआ था और दूसरे में चाबुक लेके बड़े प्रेम पूर्वक अपनी बहन को अपने ससुराल की ओर ले जा रहा था, दोनों फेंक कर बाएं हाथ में देवकी के बाल को लिया और दाहिने हाथ में सबके सामने शादी के दिन, विवाह के दिन अपनी बहन जो पूर्ण रूप से उसके आश्रय में थी, बाएं हाथ में उसका बाल लिया और दाहिने हाथ में तलवार लेके, जिस प्रकार हम नारियल को ऐसे थोड़ा काटते हैं ऐसे काटने चला गया। कहां गया वो प्रेम, आंखों में आंसू आ रहे थे अभी, मेरी प्यारी बहनियां कहां गया ये एक क्षण के अंदर। ये आसुरिक प्रवृत्ति है, ये कभी कभी असुर का मतलब है ऐसा सिंह होना चाहिए, दो दांत बाहर आना चाहिए और ऐसे ऐसे कुछ पत्ते लगे रहने चाहिए। एटलीस्ट मैं जब छोटा था चंदा मामा पढ़ता था, चंदा मामा में सारे देवतागण उनका पेंटिंग एकदम पिंक कलर का होता है, मुकुट पहने रहते हैं, दो ही हाथ होता है और सारे जो असुर लोग हैं कोई भी हो, असुर मतलब कहीं भी मुकुट भी पहना रहेगा तो उसमें से दो सिंह आएगा और बैगनी रंग का होगा, पेट इतना बड़ा ऐसा बहुत ही अगली बॉडीली फीचर्स। तो मेरे को लगता था असुर लोग तो दूसरे जगह में रहते हैं, यहां रहते ही नहीं, वहां वो तो दूसरे जगह रहते हैं। पर भगवान गीता में कहते हैं द्वौ भूत स्वर्गौ लोके अस्मिन् दैवा आसुर एव च। ये आसुरिक प्रवृत्ति ऐसा मत समझिए कि कहीं और बाहर में है, यही है अंदर में। जिस हद तक हम अपना प्रेम रचा रहे हैं, कब तक, जब तक सब कुछ ठीक ठाक है, आप मेरा पीठ खुजलाओ, मैं आपका खुजलाऊंगा, हम तो दोस्त हैं, एक दूसरे से आंसू बह रही है, कितने गले लगा रहे। पर एक क्षण के अंदर जब अपना स्वार्थ निकल गया वहां से, तुरंत मूल स्वरूप हमारा प्रकट हो जाता है। और यही हम कंस के व्यवहार में देख रहे हैं। आसुरिक मतलब क्या, उनका जो प्रेम है तथाकथित प्रेम, वो बदलता रहता है, कभी ऐसा कभी वैसा, कभी बहुत दिखावट कभी कुछ भी नहीं। और दूसरा, वही प्रेम एकाएक द्वेष में बदल जाता है अगर उनका स्वार्थ में कोई बाधा आ जाए। और दूसरा, एक क्षण के अंदर अपने धर्म के तत्व को भूल जाएंगे, बड़े बड़े धर्म की बातें कहेंगे, पर जब अगर उनका स्वार्थ में कोई बाधा आ जाए तो सारे धर्म के तत्व को भूल जाते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न पूछा कुछ दिन पहले, जो एक मामूली प्रश्न, बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने को भी किसी ने पूछा होगा, अब पूछेंगे, अब पूछते रहेंगे, पूछे हैं, पूछे थे और पूछे रहेंगे, पूछते रहेंगे। वो क्या है कि आप कहते हो कि दुर्योधन ने भगवान का नियम तोड़ा, पर क्या अर्जुन ने नहीं तोड़ा नियम? कर्ण को मारते वक्त अर्जुन ने नहीं तोड़ा, दुर्योधन को मारते वक्त भीम ने नहीं तोड़ा नियम, द्रोणाचार्य को मारते वक्त धृष्टद्युम्न ने नहीं तोड़ा? अरे क्या फर्क पड़ता है, दोनों तो तोड़ रहे हैं, दोनों ने नियम तोड़ा, तो आप सिर्फ इनका गुणगान क्यों करते हो पांडवों का, और इनका धिक्कार क्यों करते हो? पर ध्यान से देखिए, दुर्योधन ने नियम तोड़ा और दुर्योधन ने भी नियम का पालन किया। जब उसे अर्जुन 5 तीर मांगने आया तो 5 तीर उसने दे दिया। उसने कहा कि अगर तुम मांग के लोगे तो मैं पूरा राज्य तुम्हें दे दूंगा, बोल चाहिए क्या? बोला नहीं नहीं वो तो नहीं, फिर वो 5 तीर मुझे दे दो, दे दिया उसने। तो सवाल ये उठता है कि दोनों ने तो नियम तोड़ा और दोनों ने नियम का पालन किया, तो क्यों एक असुर माना जाता है और दूसरा महान भक्त माने जाते हैं? अंतर यह है कि दुर्योधन ने नियम का पालन किया जब उसके स्वार्थ के लिए वो नियम हित थे, और जब वो स्वार्थ के हित से परे चला गया तो नियम भी चला गया। नियम तब तक मैं उसका कोट करूंगा, मतलब उस नियमों को बोलूंगा, उस नियमों का पालन करूंगा जब तक मेरे हित में हो। जब देखा कि ये अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु ये तो सबको ध्वंस कर देगा, इसे मारना ही है, नहीं धर्म के स्तर पर हम मार ही नहीं सकते इसको, हम किसी से नहीं मारा जाएगा या अकेले से, तो बोले धर्म तो छोड़ो, उसको किसी तरह से उसको मारना है, अधर्म सही के अधर्म के तरीके से ही थे सही। तो हां, कौरवों ने नियम तोड़ा कब? जब उनके हित या उनके स्वार्थ के प्रतिकूल था तो उन्होंने नियम तोड़ा, और जब उनके स्वार्थ के हित था तो उन्होंने नियम का पालन किया। पर पांडवों को देखिए, पांडवों को सिर्फ एक चीज से लेना देना था, कृष्ण को प्रसन्न करना। अगर कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हम उन नियमों को पालन करेंगे, अगर कृष्ण नियम तोड़ने से प्रसन्न होंगे तो हम नियम को तोड़ेंगे, नहीं अपने स्वार्थ के हेतु न नियम कभी नहीं तोड़ेंगे और हमेशा पालन करेंगे। अगर नियम उनको तोड़ना होता तो सबसे उत्तेजित समय था जब द्रौपदी का निर्वस्त्र हो रहा था। आप सोचिए, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधर भीम, नकुल सहदेव, और कोई भी व्यक्ति दुर्बल से दुर्बल व्यक्ति, भले क्षत्रिय नहीं हो, उसके अंदर क्षत्रिय खून नहीं हो, पर अगर अपनी पत्नी को किसी तरह से कोई दुर्व्यवहार करता है तो एक दुर्बल व्यक्ति भी खून खौल उठता है और वो कुछ ऐसा चीज कर बैठता है कि लोगों को विश्वास नहीं होता, पागल हो जाता है वो व्यक्ति। अमेरिका में सबसे बड़ा समस्या है, पुलिस लोग भी नाक नहीं अड़ाते जब पति पत्नी का मामला होता है और पत्नी के साथ किसी का और का संबंध रहता है और पति गुस्सा आके फिर जब वो कुछ क्या कहते हैं बंदूक बंदूक लेता है और जब वो किसी को मारता है तो टुकड़े टुकड़े करके रख देता है, ऐसा पागल हो जाता है उसे, वो नहीं समझता कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे क्रोध। और वो भी भीम से, ये नहीं कि बड़े बड़े लोग खड़े हो अब क्या करूं, मारे थोड़ू ठीक है चुपचाप रहूंगा, क्या करूं बड़े बड़े लोग हैं बहुत शक्तिशाली, नहीं तुम्हारे पास शक्ति है और सबको खत्म करके रख सकते हैं। पर फिर भी उन्हें मालूम था धर्म के विरुद्ध है ये। महाराज युधिष्ठिर ने मूर्खतावश भगवान की इच्छा के अनुसार दांव पे लगा दिया द्रौपदी को, और युधिष्ठिर महाराज ऐसे थे कि बोले नहीं हो गया हो गया, तोड़ना था तो व्यक्ति को वहां तोड़ना था, उससे ज्यादा प्रोवोकिंग सिचुएशन टॉलरेंस, हम लोग बोल रहे थे टॉलरेंस, दिस इज हाइट ऑफ टॉलरेंस, सहनशीलता। मेरे क्या करें, उसने कहा आपको चुप नहीं रहा, भीम ने कहा कि जो भी हाथ लगाया उसके पूरे जितने सारे भाईचारे जितने हैं सबको मैं मार के रहूंगा, कसम खाता हूं मैं। अर्जुन ने भी, पर उस समय तोड़े नहीं नियम, पर जब भगवान ने कहा युधिष्ठिर महाराज को बोलो अश्वत्थामा मर गया, युधिष्ठिर ने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला था और ना ही वो बोलने की इच्छा थी उसको, भगवान उसे प्रवृत्त कर रहे थे बोलो मैं कह रहा हूं, उसमें भी युधिष्ठिर ने हिचकिचाया। जब कर्ण को मारने के लिए कहा अर्जुन से, भगवान ने कहा मारो इसी समय मारो उसे, महाभारत पढ़ेंगे तो कितना उत्तेजित करना पड़ा अर्जुन को वो काम करने के लिए। तो भगवान के भक्त नियम का पालन करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, और नियमों का उल्लंघन करते हैं अगर भगवान के आदेशानुसार उनकी प्रसन्नता के लिए उनकी तृप्ति के लिए। उनको ना नियमों से लेना है ना देना है, उनको भगवान को प्रसन्न करने से लेना देना है। हम देखेंगे अभी वसुदेव भी नियम बदलेगा। हम लोग कहते हैं डुप्लीसिटी इज नॉट ए गुड थिंग, डुप्लीसिटी को मतलब क्या कहते हैं, या मतलब कहना कुछ और करना कुछ और। पर हम देखते हैं जब कंस देवकी को बचाने के लिए कंस का इतना गुणगान किया वसुदेव ने, डिप्लोमेसी ये राजनीति शास्त्र है उसका अपनाया उसने, तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि असुर योनि मतलब कोई दूसरे ग्रह में रहते हैं, नहीं, दैव संग्राम दैवासुर संग्राम जो है ये अंदर भी चलता है हमारे। एक्चुअली बताया गया है कि एनीवे एक एक तत्व भी अगर घुसेंगे तो फिर बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा और पूरे कथा हम समाप्त नहीं कर पाएंगे। फिर भी मुख्य बात यह जानना है कि असुर मतलब आप मत समझिए कि असुर का मतलब है कि ऐसा रंग का होना है या ऐसा चेहरा होना है, नहीं, हमारी गुण हमारे लक्षण हमारे व्यवहार हमारे कार्यकलाप ये दैविक भी हो सकते हैं आसुरिक भी हो सकती है, और हम में भी वो कंस की प्रवृत्ति हो सकती है। कृष्ण लीला में साफ साफ नजर आता है, तुरंत वसुदेव का देखिए एक क्षण के अंदर जितना कंस को तकलीफ था उतना या उससे ज्यादा वसुदेव को भी तकलीफ था। अरे देवकी का तो आठवां बच्चा मारने वाला था, पर वसुदेव अभी शादीशुदा है, अभी उसकी पत्नी मरने वाली है, समस्या किस पे ज्यादा है? पर वसुदेव विचलित नहीं हुए, महाभाग वासुदेव, वसुदेव महाभाग। क्यों? क्योंकि जैसे प्रभु जी ने बताया, प्रभुपाद कहते हैं ए ग्रेटनेस ऑफ ए पर्सन इज एस्टिमेटेड बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। और इससे ज्यादा प्रोवोकिंग क्या हो सकता है? अभी शादीशुदा है और अभी उसको सर से काटने वाला एकदम आंखों के सामने, पर कभी वो विचलित तो नहीं हुए वसुदेव। ऐसा नहीं क्या उनको दुख हो रहा था, उनको दर्द हुआ, पर नहीं, विचलित नहीं हुए, ठंडे दिमाग से सोच रहे थे। और महाभाग का मतलब है एक क्रूर व्यक्ति को भी कैसा सांत्वना देना है, एक महाभाग को मालूम होता है। और तीसरा, अपने सबसे बड़े दुश्मन को भी माफ करने की शक्ति उसके अंदर होती है, इसीलिए वसुदेव को भगवान ने अपना पिता चुना, वासुदेव महाभाग। तो ये लक्षण, अगर कृष्ण को प्राप्त करना है हमारे जीवन में, कृष्ण हमारे हृदय में जन्म ले सक, कृष्ण हमारे जीवन में जन्म लेना है, तो हमें वसुदेव और देवकी के जो लक्षण जिन्होंने इन्होंने दिखाया है, उसको कम से कम प्राप्त करने की कोशिश करनी। साम दान दंड भेद क्या क्या, दंड तो नहीं दे सकता था कंस को वसुदेव, कैसे देते हो, इतना शक्तिशाली आदमी है। तो उन्होंने साम और भेद का उपयोग किया। साम मतलब उसका गुणगान करना, भोज यशस्कर, भोज में वंश के श्रेष्ठ, श्रेष्ठ क्या, सबसे अधम व्यक्ति था वो, नरोत्तम, नराधम है उसको नरोत्तम कहना, खुश करना, बोलिए तुम्हारी बहन है, संबंध के द्वारा साम बताया जा सकता है, देखो तुम्हारा ही संबंध है, तुम्हारी बहन है ये। अलग अलग तरीके से कंस ने, वसुदेव ने कोशिश किया। और फिर भेद, भेद यानी भय और शंका उत्पन्न करना, ठीक है अगर तू इसे मार देगा तो क्या होगा, तेरा यश क्या होगा, स्त्री को तूने मारा, अपनी बहन को तूने मारा, उसके विवाह के दिन मारा तूने उसने, लोग क्या कहेंगे, ये तो सोच, और अगले जन्म में तेरा क्या होने वाला है। इस तरह से बहुत सारे साम दान भेद इत्यादि बताए, पर देख रहे थे कि कंस उसे सांत्वना नहीं हो रहा है। और तब उसने, उन्होंने ही यूज लॉजिक, बोले देख तू भी मरने वाला, अभी नहीं तो 50 साल के बाद, लोग तो सभी मरने वाले हैं, मरने से पहले तू ऐसा कार्य क्यों करता है जो तुझे अधोगति दिलाएगा, मरने से पहले हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो अगले जन्म में अच्छी स्थिति हो, यह बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण है। मृत्यु तो सबको आने वाली है, अभी नहीं तो 100 साल के बाद, पर उससे पहले मैं अभी ऐसा कार्य नहीं करना है ताकि आने वाले जो जन्म है उसको हम बिगाड़ दें। तो इस तरह से उन्होंने बताया। और कहते हैं कि देखो हर एक व्यक्ति को दूसरा जन्म मिलता ही है, मृत्यु से पहले तुम्हारा दूसरा शरीर तैयार हो जाता है। वसुदेव उदाहरण देते हैं, जैसा आदमी चलता है तो एक पैर उठाने से पहले दूसरे को रखता है फिर इसको उठाता है, इस तरह से यह शरीर छोड़ने से पहले तुम्हारा दूसरा शरीर तैयार हो गया है, जब तैयार हो जाता है तब यह शरीर छोड़ते हो तुम। बोलेंगे ऐसा कैसा, ये शरीर छोड़ने से पहले दूसरा शरीर तैयार। दूसरा उदाहरण देते हैं, एक पत्ते के ऊपर जो कीड़े रहते हैं, वो एक पत्ते से दूसरे, एक पत्ते पहले दूसरे पत्ते को पकड़कर फिर इस पत्ते को छोड़ता है, इस तरह से दूसरा शरीर तैयार होते ही यह शरीर छोड़ता है आदमी। तो मैं कभी सोच रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने के बाद तो पता लगता है ना कि कौन सा कर्म सब देख के उसको भेजा जाता है दूसरे। पर आप एक छोटी सी उदाहरण, मामूली उदाहरण है कि जीवन के हर क्षण हम दूसरे शरीर की तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी,
हर एक विचार आपके, हर एक शब्द जो आप कह रहे हैं और हर एक कार्य आप कर रहे हैं अभी, वो आपकी दूसरी शरीर तैयारी कर रही है। बोले ऐसे कैसे? सरल सी बात है, एक बच्चा चौथी में पढ़ रहा है, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, परीक्षा के दिन उसने परीक्षा का पेपर लिखा, जैसे वो पेपर लिख रहा है वो तैयारी कर रहा है कि मैं पांचवी में जाऊंगा कि चौथी में ही रहूंगा या तीसरी में जाऊंगा। जैसा उसने पेपर लिखा और दे दिया सुपरवाइजर के हाथ में, सील हो गया, अभी उसका अगला क्लास तैयार हो गया है, सिर्फ उसको पता लगेगा जून 15 तारीख को, 3 महीने के बाद। पर जब तुम लिख रहे हो, तुम ऑलरेडी डिसाइड कर दिए कि तुम पांचवी में जाओगे कि चौथी में ही रहोगे, और वो एग्जाम किस पर निर्भर है, हर रोज तैयारी कर रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से हर क्षण हम दूसरे शरीर की तैयारी कर रहे हैं। अंतकाले च मामेव स्मरण यद्यद यम्यम वापि स्मरण भावम चेजत्यन्ते कलेवरम, और वो भावना प्राप्त करने के लिए तैयारी अभी से होनी चाहिए, कर्मणा मनसा वाचा। इसीलिए वो कहते हैं कि पहला दूसरा शरीर तैयार हो जाता है तब तुम इस क्लास को छोड़ते हो, पांचवा क्लास में तुम्हारा एडमिशन हो गया तब तुम्हें चौथी को छोड़कर वहां जाना पड़ता है। तो इस तरह से कंस को कहते हैं कि अगले जन्म की जो तैयारी, उसमें बिगाड़ क्यों रहा है एक दूसरे अननेसेसरीली बिना कोई कारण के, वैसे भी तू मरने वाला है, अभी नहीं तो 50 साल के बाद ही सही, आठवां पुत्र मारने वाला है, ठीक है, हो सकता है हो ही नहीं आठवां पुत्र, उसकी क्यों चिंता करता है, अभी से तू क्यों मारने चला इसे। इस तरह से बहुत तरह से समझाते हैं, और भी बहुत सुंदर सुंदर उदाहरण है वसुदेव जी के जो बातचीत आप सुनेंगे तो, पर फिर भी देखते हैं कि ये सुनने वाला नहीं है। मन के बारे में बताते हैं, मन की स्थिति क्या है, वो दूसरा जन्म तैयार करती है, फिर वो बोलते हैं ठीक है अंत में, और उसके एक अगला श्लोक में लिखा गया है मनुष्य को चाहिए कि अपना जीवन को बचाना चाहिए जितना हो सके, अपनी शक्ति से और अपनी बुद्धि से शरीर को बचाए रखना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, ये साधन है, ये साधन को साध्य को प्राप्त करने के लिए अच्छा बनाए रखना चाहिए, जरूरत से ज्यादा इसको देखभाल करना आसक्ति हो गई और अवहेलना करना ये भी अति हो गया। भोगवाद लोग, भोगवादी लोग इस शरीर को जरूरत से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो एक समस्या है। ज्ञानी लोग इसकी अवहेलना करते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या के नाम से, पर युक्त वैराग्य भक्त का यह है कि इस शरीर को बनाए रखना है जब तक हो सके, जितना अच्छा हो सके भगवान की सेवा के लिए, बुद्धि और शक्ति के द्वारा। वसुदेव ने कहा शक्ति कैसा लगा सकता हूं इस व्यक्ति के प्रति, अभी तो बुद्धि लगाना पड़ेगा मुझे। तो फिर उन्होंने सोचा किसी ना किसी तरह से अभी मैं देवकी को बचा लेता हूं, फिर देखेंगे आठवां पुत्र हुआ या नहीं हुआ, तब तक क्या होगा, कंस भी मरा जाएगा, वैसे भी मर जाएगा हार्ट अटैक, क्या मालूम, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें वचन देता हूं कि सारे पुत्र, सारे जितने बच्चे मेरे पैदा होंगे सब तुम्हें मैं लाके दूंगा। कंस जैसा व्यक्ति भी वसुदेव के वचन को स्वीकार किया। धीर अधीर जनप्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो, क्योंकि वसुदेव के हृदय में कोई मत्सरता नहीं थी, और ऐसा व्यक्ति जब कहता है वचन, असुर व्यक्ति भी, आसुरिक व्यक्ति भी उस व्यक्ति के वचनों पर विश्वास करता है, ये भक्त है, ए मैन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ कैरेक्टर। असुर जैसे व्यक्ति को भी उनको विश्वास है, उन्होंने कहा कि ठीक है। और अंत में एक बड़ा महत्वपूर्ण सीख हमें सीखना है, देखिए आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी कभी झूठ नहीं होती, क्योंकि देवता कह रहे हैं, आकाशवाणी हुई थी कि देवकी का आठवां गर्भ कंस तुझे मारेगा। वसुदेव को पूर्ण रूप से उस में विश्वास था, तो वो कह सकता था मारना है तो मारना, वो जिंदा हो जाएगी, कुछ तो होगा, आठवां गर्भ होगा ही, क्योंकि आकाशवाणी हो गई है। आराम से मैं बैठे रहूंगा, जो करना है कर, मैं क्यों लड़ाई, क्यों क्यों इसे क्यों भिड़ने जाऊं अंदर, नहीं। वसुदेव ने अपनी पूरी कोशिश की, भले उसे मालूम था कि अंततः ये होने वाला है, क्योंकि आकाशवाणी हो गई है। जिस प्रकार 11वें अध्याय भगवद गीता में हम देखते हैं, भगवान ने जब काल स्वरूप दिखाया अपना, तस्मात् मोत्तिष्य यशोलवस्व मयै वैते निहता पूर्वमेव, अर्जुन 18 दिन में तुम पांच भाई और चंद कुछ लोगों के अलावा इस कुरुक्षेत्र के रणभूमि में सबके सब मरे पड़े रहेंगे कोई, और तुम निश्चित रूप से जीतोगे। तो अर्जुन कह सकता था हरि बोल, ठीक है मैं अभी जाके सोता हूं, आप लोग काम संभालो, मेरे को मैच फिक्सिंग हो गया ऑलरेडी, कह सकता था वो। प्रभुपाद जी कहते हैं अर्जुना डिड नॉट टेल कृष्णा यू गो एंड फाइट नाउ आई विल गो एंड सिट एंड स्मोक गांजा, क्योंकि हिप्पी से बात करते थे, उनका वही काम था गांजा फूकना। तो बोले अर्जुन को मालूम था, परिणाम मालूम था, पर फिर भी जी जान उसने लगाया, जी जान उसने लगाया। निमित्त मात्र भव, निमित्त बनने का मतलब है तुम अपनी पूरी कोशिश करो, फल छोड़ दो, फल जैसा जब जिस रूप से भगवान देना चाहते देंगे। पृथ्वी ते आचे जत नगराधिग्राम सर्वत्र प्रचार होई में मोरना, तो प्रभुपाद जी कह सकते थे मैं वृंदावन बैठ के जब करूंगा पृथ्वी में सब अपने आप हो जाएगा, नहीं, गुरु महाराज की आज्ञा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दिया है, हमार आज्ञा है गुरु हो या तारो ही देश जारी देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। अब मुझे जाना है, मुझे लड़ना है, भले मुझे मालूम है भविष्यवाणी हुई है, पर मैं मुझे मेरा कोशिश करना है। तो इसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे, हमने कई बार इन कथाओं को सुना है, पर कंस के चरित्र को ध्यान से पढ़िए, वसुदेव देवकी के चरित्र को ध्यान से पढ़िए, भक्तों के चरित्रों को ध्यान से पढ़िए, तथाकथित आसुर, तथाकथित नहीं असुर है, फुल टाइम असुर एकदम, असुरों के चरित्र को ध्यान से पढ़िए, गौर कीजिए, तब आपको लगेगा कि अरे मैं तो कौरव के पक्ष में हूं। अभी तक मैं समझता था कि मैं तिलक लगाया हूं, कंठी माला 16 माला करता हूं, पर ये आसुरिक प्रवृत्ति अभी तक मुझ में नहीं गई है, और इसीलिए जन्माष्टमी हमारे लिए एक सोशल फंक्शन रह जाता है। इसीलिए जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण जन्म नहीं लेंगे, कैसे लेंगे जब तक ये षड गर्भ, अरे कितना तकलीफ उठाना पड़ा, एक माता को जन्म दे रही है, गर्भ धारण की हुई है, पूरी तरह जानते हुए कि जैसा ये बच्चा पैदा होगा 9 महीने के बाद तुरंत मेरे आंखों के सामने इसे पटक कर मार दिया जाएगा। थोड़ी दिन पहले हमारे किसी की मुलाकात हुई एक माता जी की, बच्चा पैदा हुआ और थोड़ी दिन में शरीर छोड़ दिया बच्चा, कितनी दुखी थी वो, एक बार नहीं 6 बार उत्साहात निश्चयात धैर्यात, ये भक्त का लक्षण है, देवकी से सीखना है। मैं वो कह सकती थी ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, बच्चा ही नहीं पैदा करूंगी, देखता हूं तू कैसा मारेगा, एक आईआईटी के लड़के ने एक बार हम महाराज जी से एक प्रश्न पूछा, हाँ महाराज जी आए हुए थे हमारे मंदिर में, बोले कंस कितना मूर्ख था, अरे देवकी को दूसरे कमरे में और वसुदेव को दूसरे कमरे में रख देना था, बच्चा ही नहीं पैदा होता 8वां। तो महाराज जी ने कहा वो आईआईटी से नहीं आया था। तेरे जैसा मूर्ख नहीं था वो, उसे मालूम था कि जो देववाणी हो गई होने वाला है, जल्द से जल्द हो जाए अच्छा है, वैयक्तिक रूप से मैं मारते रहूंगा। तो इस तरह अपनी बुद्धि टेढ़ी जाती है, क्या करेंगे। तो षड गर्भ मारे गए, षड गर्भ, छह गर्भों का हत्या किया, बट उत्साह, बड़े उत्साह से दूसरा पुत्र हर एक साल, ये पूर्ण रूप से जानते हुए कि जैसा ये पैदा होगा मारा जाएगा, बुरी तरह से मारा जाएगा, आंखों के सामने पटक दिया जाएगा, इसे खून से लथपथ होके। निश्चयात, उसे पूर्ण विश्वास था ये मेरा सेवा है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि आठवां गर्भ, तो आठवां गर्भ होने तक जो भी हो, अब वो भगवान जाने आठवां गर्भ कैसे बचेगा, क्योंकि इसके बंदी में बने। हम लोगों को अभी मालूम नहीं है, जिन लोगों को ऐसा कोई ऐसा कोई लोकल डॉन अगर थोड़ा धमकी दे देता है तो डर जाते लोग, डर के मारे हमेशा उसके बारे में चिंतन करते रहते, ऐसा कैसा वो सोचे कि उसका क्या होगा, और ये कौन सबसे बड़ा टेररिस्ट था, ये सबसे बड़ा टेररिस्ट, लोग डरते थे, ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी कुछ भी फूट सकता है बॉम्ब, ऐसा ये आदमी कुछ भी कर सकता है कभी भी, हमेशा डर, हमेशा डर, इतना भयभीत स्थिति में रखना, पर उत्साह, बोले ठीक है पैदा करते रहूंगी आठवें गर्भ तक, और धैर्य, सहन करो। अब इससे ज्यादा सहनशीलता, जानते हुए कि ये बच्चे को मारा जाएगा फिर से पैदा करते रहना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, छह बार, क्या सहन नहीं करता भक्त भगवान की सेवा के लिए। षड गर्भ मारे गए, और तब भगवान योग माया को बुलाए, योग माया को बुला के कहते हैं कि, ये बहुत सुंदर श्लोक है और इसमें एक कोल्हापुर का वर्णन है, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं आपको। गच्छ देवी व्रजम भद्रे गोप गोभीर अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, हे समस्त जगत द्वारा पूज्या तथा समस्त जीवों को सौभाग्य प्रदान करने वाली शक्ति, तुम व्रज जाओ जहां अनेक ग्वाले तथा उनकी पत्नियां रहती हैं, उस सुंदर प्रदेश में जहां अनेक गौवे निवास करती हैं, वसुदेव की पत्नी रोहिणी नंद महाराज के घर में रह रही है, वसुदेव के अन्य पत्नियां भी कंस के भय से वहीं अज्ञातवास कर रही हैं, कृपया कृपा करके वहां जाओ। देवकी के गर्भ के में संकर्षण या शेष नाम का मेरा अंश है, तुम उसे बिना किसी कठिनाई से रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दो। हे सर्व कल्याणी योग माया, तब मैं अपने छहों ऐश्वर्यों से युक्त होकर देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट होऊंगा, तुम महाराज नंद की महारानी माता यशोदा की पुत्री के रूप में प्रकट होगी। सामान्य लोग पशुओं की बलि करके विविध सामग्री से तुम्हारी भव्य पूजा करेंगे, क्योंकि तुम हरेक की भौतिक इच्छाओं पूरी करने वाली, पूरी करने में सर्वोपरि हो। अर्चिष्यन्ति मनुष्यास्त्वाम सर्व काम वरेश्वरीम धूपोपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान, सर्व काम वर प्रदान। हे देवी, तुम मेरे साथ जन्म लोगी, भाई बहन के रूप में हम दोनों जन्म लेंगे, मैं वसुदेव के यहां, तुम नंद महाराज के यहां जन्म लोगी, और तुम्हारी किस तरह से पूजा होगी, क्योंकि तुम मेरे बहन के रूप में जन्म ले रही हो। नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति च माया नारायणी ईशानी शारदा इति अंबिकेति च। ये बड़ा सुंदर महत्वपूर्ण है, भगवान कह रहे हैं योग माया को भगवत धाम में भेजने से पहले कि हे देवी, तुम मेरे साथ जन्म लोगी और तुम्हें चारों दिशाओं में तुम्हारा पूजा होगा, कैसे, धूप उपहार बलि भी, बलि चढ़ाकर लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। तो सर्व कामवरेश्वरी, भौतिक इच्छाओं को पूर्ण करने में तुम तुरंत सबकी इच्छाओं को पूर्ण करेगी, और नाम बताए गए हैं इस देवी को, बहिरंगा शक्ति योग माया जो अवतरित हुई, उसका नाम होगा दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, चंडिका, शारदा, कन्यका, काली, कुमुदा, कृष्णा, माधवी, माया, नारायणी, ईशानी, अंबिका। इस नामों से तुम जानी जाओगी। वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि कौन कौन से प्रदेश में किस रूप से उसे पूजे वो पूजी जाएगी। दुर्गा वाराणसी में पूजी जाएगी, वाराणसी में दुर्गा। भद्रकाली अवंती देश में, विजया उड़ीसा में, चंडिका कामरूप देश में, शारदा उत्तर भारत में, कन्यका केप कमोरिन कन्याकुमारी में, और वैष्णवी या दूसरा नाम है महालक्ष्मी कोल्हापुर में। तो मैं सोच रहा था, अरे महालक्ष्मी तो लक्ष्मी जी है, ऐसा कैसे इधर नाम आ गया वैष्णवी। विजय ध्वज आचार्य उसका मतलब देते हैं, वो जो क्योंकि वो भगवान विष्णु की एक शक्ति है इसीलिए उसका नाम है वैष्णवी और महालक्ष्मी के रूप से पूजी जाएगी। और प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में कहते हैं कि महालक्ष्मी के अनुयायी और अंबिका के अनुयायी मुंबा देवी मुंबई में भी है, महालक्ष्मी मंदिर है हमारे अपना, बहुत बहुत फेमस है। पर यहां दुर्गा देवी के नाम है, यहां महालक्ष्मी जी के नाम कैसे आई, ये थोड़ा मुझे शंका लगा। दूसरे उसके तात्पर्य में कहते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दो प्रकार के पूजा होती है, दुर्गा शाक्त पूजा और शुद्ध शाक्त। दुर्गा जो है भगवान की शक्ति है, योग माया भी भगवान की शक्ति है, महामाया भी भगवान की शक्ति है, श्रीमती राधा रानी भी भगवान की लादिनी शक्ति है। पर यहां दुर्गा के अलग नाम बताए गए हैं और वहां वैष्णवी और वहां ये महालक्ष्मी जी कैसे बताई गई। तो यहां बताया गया है दुर्गा शाक्त। दुर्गा शाक्त मतलब वो सिर्फ भौतिक भोग के इच्छुक से जो पूजा करते हैं वो दुर्गा शाक्त है, जबकि शुद्ध शाक्त या वैष्णव वो है जो सिर्फ मुक्ति हेतु, आध्यात्मिक मुक्ति हेतु और आध्यात्मिक धाम प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं और कुछ नहीं। और दूसरा, ये दुर्गा की पूजा करते हैं अलग अलग नामों द्वारा, जबकि जो शाक्त है शुद्ध शाक्त भौतिक प्रकृति को पूजा नहीं करते, शुद्ध शाक्त जो वैष्णव हैं वो हरा, हरे कृष्ण जब कहते हैं, हरे यानी श्रीमती राधा रानी, श्रीमती राधा रानी की पूजा करते हैं वो। और किस लिए, एक मौका प्राप्त करने के लिए, ताकि प्रभु की सेवा में हमेशा लगे रहे, आध्यात्मिक दैवी महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता, अंतरंग शक्ति से भगवान की शुद्ध भक्ति करने की याचना करते हैं। और इसीलिए हमेशा वो सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण या रुक्मिणी द्वारकाधीश इसकी पूजा करते हैं, अकेले लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते। वो अकेले लक्ष्मी जी की करना मतलब क्या, वो दुर्गा देवी बनती है, यानी भौतिक चीजों की कामना कर रहे हैं। पर जब लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं तब क्या है, हम लक्ष्मी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें शुद्ध भक्ति दो ताकि हमेशा नारायण की सेवा में लगे रहें। तो भावना के ऊपर निर्भर होता है कि भले हम किसको पूज रहे हैं, जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम राधा कृष्ण की पूजा कर रहे हैं पर एक्चुअली हम लक्ष्मी नारायण की कर रहे हैं, क्योंकि विधि विधान के अनुसार जो हम कर रहे हैं साधना भक्ति में, ये राग मार्ग से पूजे जाते हैं राधा कृष्ण, पर हम जो कर रहे हैं वो लक्ष्मी नारायण जी की सेवा है, क्योंकि विधि विधान से करते हैं और हम इस स्तर पर उस जो राग मार्ग से राधा कृष्ण की सेवा है अब हम नहीं करते वो। तो ये स्वरूप नहीं है, हमारी चेतना के ऊपर निर्भर है। और क्यों? क्योंकि सिर्फ लक्ष्मी जी के सिर्फ पत्नी को लेके आया मैं, उसको बहुत अच्छी लगती है आपकी पत्नी मुझे, सिर्फ उनका फोटो मैं घर में रखूंगा, बोलेगा ऐसा कैसा, ये मेरी पत्नी है, पति फिर पति का फोटो नहीं रखेगा, सिर्फ पत्नी का किसी का फोटो रखोगे आप घर में तो अनुकूल नहीं लगता ये। क्योंकि लक्ष्मी जी का नवदा भक्ति में पाद सेवनम की पराकाष्ठा है लक्ष्मी देवी, हमेशा नारायण के चरण दबा रही है वो, वैकुंठ में भी यही उनका सेवा है। और सचमुच में अगर हम उनको प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनकी इच्छा क्या है कि विष्णु की सेवा हो, वही हम प्रार्थना करना, वो प्रार्थना करेंगे तो एक्चुअली हम लक्ष्मी जी की स्तुति कर रहे हैं, लक्ष्मी जी को हम शरण गा रहे हैं। पर जब केवल लक्ष्मी जी की स्तुति करते हैं, धन लक्ष्मी धान्य लक्ष्मी साम्राज्य लक्ष्मी आयसा देते रहो, धनम देही पुत्रम देही बलम देही 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 देही, वो सब छोड़ो, विष्णु विष्णु से ले लेना, तू दे सकती है जो दे सकती है उतना ही दे मुझे, ये भावना वो दुर्गा देवी है। वो रूपा जी कहते हैं सीता देवी जब रावण के हाथ में थी वो सीता नहीं चंचला वो कभी टिकेगी नहीं एक जगह। और हम देखते हैं लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हो और मांस मांस का खा रहे हो, कैसे हो सकता है, लक्ष्मी जी कभी खाती नहीं, तुम कैसे चढ़ा के खा रहे हो। तो एक्चुअली इसीलिए यहां वैष्णवी जो है, या वल्लभाचार्य कहते हैं कि वो महालक्ष्मी जी हैं। तो हमारी चेतना के अनुसार आदान प्रदान होता है, पर वही अगर हम जाके मांगेंगे कि मैं मूर्ख हूं कृपया आप जिस तरह से हमेशा विष्णु की सेवा करती है, ऐसा लक्ष्मी नारायण सीताराम राधा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरिता में वर्णन है एक्चुअली सर्वलक्ष्मीमयी प्रोक्ता राधिका परदेवता, सर्वलक्ष्मीमयी प्रोक्ता, सारे लक्ष्मी, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ताभीर्य एव निज रूप तया कला भी, व्हाट इज द बिगिनिंग, नहीं उससे आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविताभिस ताभीर्य एव निज रूप तया कला भी। भगवान श्री कृष्ण जो आदि सर्व कारण कारणम है, वो जब प्रभु रामचंद्र के रामादि मूर्ति शुक्लान यमेन तिष्ठन, तब राधा रानी सीता देवी के रूप में आते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में विस्तृत होते हैं और लीला करते हैं तो लक्ष्मी जी के रूप में। और क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात, जब भगवान शिव जी के रूप में जैसा दूध से दही बन जाता है, इस तरह से विकार विशेष योगात तमोगुण के अधिष्ठान देव के रूप में शिव जी के रूप में आते हैं, तो वही लक्ष्मी जी दुर्गा देवी के रूप में आती है। पर भौतिक इससे संपर्क में आते हैं, वो भौतिक शक्ति से संपर्क में आते हैं। तो हमारी भावना जो है वो भेद करती है कि सही में हम मां लक्ष्मी की स्तुति कर रहे हैं या योग माया की या महामाया की। वही योग माया कंस को महामाया नजर आई, पर वही माया योग माया वृंदावन में भगवान की सेवा में सारी योजनाएं बना रही थी, वही है शक्ति, वही है। छाए वयस्य भुवनानि विभर्त दुर्गा, अगर आप भोग करने की कोशिश करोगे तो दुर्गा के रूप में आएगी वो, और आप सेवा करने की कोशिश करोगे तो वो परिवर्तित होकर लक्ष्मी जी के रूप में श्रीमती राधा रानी के रूप में आपको अंतरंग शक्ति में प्रवेश देगी। तो ये एक सूक्ष्म तत्व है जो समझना बहुत जरूरी है। और जो दुर्गा शाक्त हैं वो जीवन का उद्देश्य क्या है वो नहीं जानते, ये दो वो दो, इसीलिए हम पूजा करते हैं। पर जो शुद्ध शाक्त हैं, वैष्णव हैं, वो आत्म तत्व को जानते हैं, परमात्मा क्या है जानते हैं, और उनका कर्तव्य, एकमात्र कर्तव्य है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो इस तरह से बलराम जी पहले प्रकट हुए और योग माया ने रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित किया देवकी के गर्भ से अनंत देव या संकर्षण को। और इसके तात्पर्य में संक्षिप्त रूप में मैं बताना चाहता हूं, आज जन्माष्टमी का उत्सव है, तो वसुदेव के, देवकी के 6 पुत्र हुए और 6 पुत्रों का वध हुआ। तत्पश्चात बलदेव धाम मामकम, धाम बलदेव जी को धाम बताया गया, वो प्रवेश किए और उनका स्थानांतरित हुआ। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण प्रवेश किए। तो इसके तात्पर्य में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 2 चीज समझाते हैं कि एक तो है कि देवकी जो है, या देवकी जो है वो भक्ति की प्रतीक है, क्योंकि देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए। इसी तरह से भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण समझ में आते हैं, प्रकट होते हैं, भक्ति से आकर्षित होकर वो कृष्णाकर्षणी च सा, कृष्ण को आकर्षण कर सकती है। तो पहले 6 गर्भ मारे गए, फिर बलदेव जी आए, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए। तो पहला चीज विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अपने हृदय में अगर भगवान को अवतरित होना है तो सबसे पहले इस 6 गर्भों को मारना है। और 6 गर्भ है 6 रिपु या काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। इसको कैसे मारा जाए, इस 6 गर्भों को किसने मारा, कंस ने मारा। और कंस भय का प्रतीक है, भक्त हमेशा भयभीत रहता है। अब बोले भयभीत भजहुरे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, वो तो अभय होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, नहीं, भय होना बहुत जरूरी है। जैसे मुरलीधर प्रभु ने बताया, एक बार प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे थे कि मैं माया में नहीं पढ़ू कभी, तो वो डर जो है, ये डर होना है, दिस इज ए हेल्दी फियर, इज ए वेरी हेल्दी फियर। और वॉट इज दट फियर, आई मे नॉट फॉल प्रे टू द प्रोवोकेशन ऑफ माया इन द फॉर्म ऑफ लस्ट एंगर ग्रीड एनवी प्राइड। सहन करो, तामस्तिरिक्षस्व भारत, काम वासना कुछ कहती है कर दो, निसंकोच, निर्लज्ज होकर जिस प्रकार कंस ने अपना क्रोध या काम या ईर्ष्या प्रकट की, पर वसुदेव ने उसको सहन करके रखा। तामस्तिरिक्षस्व भारत, यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुष समदुःख सुखम धीरं सह अमृतत्वाय कल्पित। तो भय क्या, भय फिर से जन्म लेना, फिर से इस तरह से चक्र में पड़ जाना, नहीं, भले ये काम क्रोध इत्यादि जितने भी जोर जोर से चिल्लाते रहे, चिल्लाएंगे वो, पर मैं सुनूंगा पर उनके करूंगा नहीं, क्यों, ये भय से कि फिर से मुझे इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में न पड़ जाऊं। वो भय जैसा एक डॉक्टर है, सर्जन, और सर्जन हमेशा राउंड पे जाता है हॉस्पिटल में, पर उसे मालूम है कि समझ लीजिए एक ऐसा पेशेंट का वार्ड है जहां सबको ऐसा बीमारी है जो पास में जाएगा तो आपको भी लग जाएगी, तो डॉक्टर डर जाएगा, बोलेगा बाप रे अभी घुसूंगा तो मेरे को लगेगा, इसीलिए आज से रेजिग्नेशन ले लो भाई, आज से मैं डॉक्टर का काम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं चल सकता, डॉक्टर है तो देखना पड़ेगा पेशेंट को, पर जाने से पहले हेल्दी फियर, डर के कारण पहले वो ग्लव्स लगाएगा, फिर क्या बोलते हैं मास्क लगाएगा, और घुसेगा तो एकदम जितना काम उतने काम करेगा, बातचीत करते नहीं बैठेगा, कैसा है, खांसो मेरे मुंह के ऊपर थोड़ा देखता हूं, खांसना है तो मुंह साइड करेगा, निर्लज कहीं का मुंह पे खांसता है उधर मुंह कर, एक तो मास्क पहन के आए उसके अंदर से भी घुस जाएगा किरमिटा। तो तैयार होके जाता है, वो तैयार होके जाता है, जितना बातचीत जितना वो पेशेंट के लिए टाइम जरूरी है इतना करता है, और होते बोलता है निकल बस मैं निकलता हूं बाहर, और बाहर आते ही ये निकालो ग्लव्स निकालो फेंको दूरे, और उसके बाद डेटॉल से हाथ धोता है, सबको धोने के बाद स्नान वान करके अंदर आता है, फिर खाने का अभी उसी से खाता नहीं, अच्छा बातचीत करते करते कुछ। तो इस तरह से भौतिक संसार में रहना है, जो काम क्रोध लोभों से भरा हुआ है, हमारा हृदय में ही भरा हुआ है, ये पेट्रोल टैंक जैसा है हमारा हृदय, और बाहर से कुछ चीजें देखते हैं तो एक माचिस का तीली जला हुआ अंदर डाल दिया, आंखों के द्वारा एक जला हुआ तीली आया, किसी अच्छा दृश्य देख लिए, पहले ही इतना तेल है, और ऊपर से और पांच द्वार है, कहीं से भी घुस सकता है ये माचिस का तीली, तो सबको बंद करके रखना पड़ेगा। कुर्मोंगानी व सर्वशः, जितना काम उतना बस, जरूरत से ज्यादा बातचीत नहीं करना बस, उधर जितना हो गया उतना बस, और आते साथ हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण चेतो दर्पण मार्जनम, जाने से पहले आने के बाद दोनों बार अगर साफ करके रखेंगे एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक डाल के, तब सुरक्षित रहेंगे। और इस भय के द्वारा हेल्दी फियर, इसके द्वारा काम क्रोध लोभ मोह चला जाएगा, और तब भक्ति साधना भक्ति यानी अनर्थों के साथ होती है, फिर दिष्टा रुचि भाव, और जब भाव भक्ति होती है तो तीव्र सेवा होती है, इंटेंस सेवा, नाम गाने सदा रुचि, आसक्ति स्तद गुणाख्याने, समय वे बर्बाद नहीं करना, एक क्षण भी मैं व्यर्थ नहीं जाएगा, और ऐसा जब सेवा करते हैं तब भगवान प्रकट होंगे, तब हृदय शुद्ध हो जाएगा बलराम जी की कृपा से, और तब। और दूसरी बात कहते हैं, और पांच मिनट बाकी है, दस मिनट बाकी है, दूसरी बात कहते हैं, अभी जो हम साधना भक्ति कर रहे हैं, कोई कह सकता है प्रश्न, देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रवेश कर सकते हैं जो ऑलरेडी दूषित हो गया है, छह असुर षड गर्भ जो थे वो असुर थे, मरीचि के पुत्र थे, बाद में हिरण्यकशिपु के पोते थे, तो असुरों का उसको नाश करना ही पड़ा, तो उस असुर जहां प्रवेश किया है, ऐसे जगह में भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रवेश किए, भौतिक और आध्यात्मिक कैसे जा सकता है। एक तो कहते हैं कि नहीं, भगवान इस भौतिक संसार में प्रवेश करते हैं पर अलिप्त रहते हैं, इस तरह से जहां भी जाएंगे वो अलिप्त रह सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं भगवान विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि अभी जो हमारी भक्ति है वो ये छह अनर्थों के साथ साथ है, हम भक्ति भी कर रहे हैं और काम क्रोध इत्यादि का आनंद भी ले रहे हैं भक्ति के नाम पे, नहीं भक्ति के साथ साथ प्रसाद के रूप में थोड़ा ज्यादा ही ले लेंगे, हो गया ना, प्रसाद है ये, और किसी को गाली भी दे दिया, अरे भक्ति में करना पड़ता है, क्रोध भक्त देशी जने, इसको बोलूंगा नहीं तो कैसा सुधरेगा, ये मेरा जिम्मेदारी है ना, तुमको किसने जिम्मेदार दिया, नहीं नहीं जिम्मेदारी है ना, सब भक्तों के ऊपर ही जिम्मेदारी है पूरे जन्म सब लोगों को सुधारना, अच्छा तो अपना क्रोध भी डाउटेल, अपना काम क्रोध लोभ जो है साथ साथ में भक्ति का वो फर्स्ट क्लास कवर डाल के उसके अंदर अपना बिल फाड़ लेते हम लोग। तो अभी जो हम कर रहे हैं वो साधना भक्ति है, जिसमें ये छह प्रकार के जो अनर्थ है वो भी मिले हुए हैं, पर धीरे 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 भगवान की भक्ति करते करते, जैसा सुबह हमने चर्चा किया पश्चाताप, भक्त सोचता है कि क्या कर रहा हूं मैं, अपने आप को धोखा दे रहा हूं, मैं इतना पाखंडी हूं, मैं पूरे दुनिया को अपने तिलक विलक कंठी लगाकर मैं भक्त कहता हूं पर मुझे मालूम है क्या कर रहा हूं मैं, हर बार जब वो कुछ ऐसा चीज करता है जो अयोग्य है उसे दुख होता है और ये दुख है, ये पश्चाताप है। वो पश्चाताप की अग्नि जो है ये छह अनर्थों को जला देती है और जलाने के बाद तब शुद्ध भक्ति, वो है भाव भक्ति जो बलराम जी का, प्रेम भक्ति जो बलराम जी का स्वरूप है, इंटेंस सर्विस, ऐसा तीव्र सांद्रानंद, सांद्रानंद विशेष आत्मा। सांद्रानंद मतलब जैसा स्पॉन्ज है ना, स्पॉन्ज में पानी डालो तो अंदर जा जाता, अंदर में जगह रहता है, पर आप लेड, लेड को क्या कहते हैं, शीशा, शीशा कितना गाढ़ा है, उसके अंदर एक्सरे भी नहीं घुसता, इसीलिए एक्सरे जब करते हैं ना तो शीशे का वो कवच जैसा पहनते हैं, क्योंकि ये शरीर के अंदर से एक्सरे घुस जाता है पर शीशे से नहीं घुसता, इतना क्या बोलते हैं, घना है, घना। जब भक्ति घना हो जाती है उसको कहते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा। नो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, 24 आवर सर्विस, उसको कहते हैं सांद्रानंद विशेष आत्मा। जैसे एक क्षण के लिए हम लोग अनुभव कर सकते हैं, अभी सिगरेट पीने का दिल नहीं करता किसी, पहले शायद पीते थे, अभी वो देखते भी हैं तो उनको लगता है ये कभी कैसा कर सकता। इस तरीके से जो महान भक्त है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता अम्बा मम जन्मनी जन्मनीश्वर, ये एक्चुअली उनकी स्थिति है, सांद्रानंद विशेषात्मा। और ऐसा सांद्रानंद विशेषात्मा जब प्रेम भक्ति आती है, घनिष्ठ जो राधा रानी का प्रेम है, राधा रानी आंखें नहीं खोलती अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं नजर आते, बोलेगी नहीं अगर श्री कृष्ण की सेवा में नहीं है, सुनेगी नहीं अगर वो कृष्ण के अनुकूल नहीं है, तो उनका जीवन संपूर्ण रूप से कृष्ण से, और कुछ भी नहीं है उनके हृदय में, सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। और इसीलिए मदन मोहन मोहिनी श्री कृष्ण कर्षणी चसा, जब ऐसी भक्ति होगी साधना भक्ति के द्वारा षड अनर्थों को निकालकर, फिर भाव भक्ति, उसके बाद प्रेम भक्ति जब होगी बलराम जी की कृपा से सदगुरु के आज्ञा के अनुसार, तब श्री कृष्ण कर्षणी चसा, तब भगवान हमारे हृदय में लेंगे, जन्म लेंगे, और तब असली जन्माष्टमी होगा। तो आज के दिन 2 मिनट बाकी है, तो प्रार्थना कराएंगे, करें, हाँ उसके बाद कीर्तन रहेगा, अरे जन्म लेंगे उसके बाद को नंदोत्सव। तो ये प्रार्थना हम कर सकते हैं कि जिस प्रकार वसुदेव और देवकी, जिस प्रकार परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने कुछ लक्षण दिखाए, उन चरित्रों को ध्यान से पढ़ेंगे और उनको अपने जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करेंगे, तब निश्चित रूप से भगवान की कृपा से हमारी कोई चेष्टा, हमारी चेष्टा होनी चाहिए, पर अंततः हमारी चेष्टा से भगवान की कृपा को आकर्षित करेंगे, उनकी कृपा से शायद एक दिन हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा और तब एक अनुकूल वातावरण होने के कारण स्वाभाविक रूप से भगवान आकर्षित होंगे और उनका हमारे हृदय में अवतरण होगा और तब हमारा जीवन सफल भवसागर को हम पार करेंगे। कृष्ण भगवान की जय, कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, शील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे कृष्ण, धन्यवाद।
हरे कृष्ण, मुंबई हम आ गए, वरिष्ठ अपने प्रिय आदरणीय भक्त श्रीमान राधा गोपीनाथ प्रमाण श्रीमान मुरलीधर प्रभु, जे सलग 2 दिवस वेळ काढून तिकडचा त्यांचा उत्सव दूर करून देखील इकडे आलेला आपल्याला मार्गदर्शन करण्यासाठी, आपल्या हृदयापासूनच्या ज्या भावना आहेत त्या त्यांना आपण पोहोचूया, आपले आभार, आपली कृतज्ञता व्यक्त करूया। निंद जोरात झाली म्हणून साडेसहा भजन होईल, भजन कीर्तन 6:30 ला श्रील प्रभुवादांप्रती आपल्या शब्दांजली किंवा आपली मनोगत जी आहे आणि साडेसहा ते सव्वान ही जी ऑफरिंग आहे ती होती आणि सव्वानवर श्रील प्रभूपादांची गुरुपूजा होईल अशा रीतीनं हा उद्याचा कार्यक्रम आहे. तर ज्या भक्तांना आपली मनोगत द्यायची आहे त्यांनी वृंदावन प्रभू व्रजभक्ती प्रभू हे या सेवेचे समन्वयक कोऑर्डिनेटर असतील तर व्रजभक्ती प्रभूंकडे आपण आपली नावं द्यावी. सर्व भक्त नावं देऊ शकतात परंतु वेळेच्या उपलब्धतेनुसार सर्व काउन्सिलर दीक्षित भक्त यांना प्राधान्य दिलं जाईल. आपण व्रजभक्ती प्रभू यांच्याकडे आपली नावं देऊ शकता. उद्या ठीक 6 वाजता कार्यक्रम चालू होईल. आज ज्या भक्तांना जाण्यासाठी गाडीची आवश्यकता आहे तर एक मारुती व्हॅन या ठिकाणी बाहेर आपलं जे जाणारं जे गेट आहे त्या ठिकाणी दगडी रंगाची एक मारुती व्हॅन उभी आहे. तर ती पेड बेसिसवर आपल्याला ज्या ठिकाणी पाहिजे त्या ठिकाणी काही भक्तांची ग्रुप्स घेऊन सोडण्याची व्यवस्था या व्हॅनद्वारे आपण केलेली आहे. किंवा जर तुम्हाला लांब जायचं असेल तर अंतरानुसार त्यांनी दर ठरवलेले ते आपल्याला सांगतील. ही व्हॅन उद्या देखील आपल्याला उपलब्ध असणार आहे. हरे कृष्ण.
हरे कृष्णा. आता खरा उत्सव सुरू होत आहे. सगळे उत्सव आहे सेमी उत्सव आहे पूर्ण पूर्ण उत्सव आहे. तुम्ही आता कीर्तन होणार आहे आणि महाआरती श्री कृष्णाची सर्वांनी उत्साहाने कीर्तनामध्ये भाग घ्यावा ही विनंती.